12 सिर पर घटाच्छादित आकाश लिए वेग से राजमार्ग को पीछे छोड़ते हुए मेरे जयत्ररथ ने राजभवन के प्राचीर से भीतर प्रवेश किया। स्वयं मुझे सारथ्य करते देखकर द्वारपाल शाह चकित हो गए थे। मुझको अभिवादन करने का ध्यान भी उनको नहीं रहा था। वे पुतलों की तरह ज्योके तो खड़े थे। वलगाएं खींचकर मैंने रथ रोका। उसको रथशाला में ले जाकर छोड़ने की भी इच्छा नहीं हुई। रथ में लगी वलगाएं घोड़ों की पीठ पर फेंक कर मैं रथदंड से कूद पड़ा। कंठबद्ध टूटे हुए बछड़े की तरह मेरा मन राजसभा में जाने के लिए आकुल था। मंडप में प्रवेश करने से पहले एक बार निरीक्षण करने के लिए मैंने आकाश की ओर दृष्टि डाली। जैसे गंगा का पात्र भूरे कोहरे से आच्छादित हो जाता है, वैसे ही चारों ओर से क्षितिज तक आकाश काले भूरे बादलों से आच्छादित था। राजभवन में जाने के लिए यज्ञ मंडप में होकर जाना पड़ता था। उस विशाल यज्ञ मंडप में अभी तक कोई उपस्थित नहीं था। दूर यज्ञ कुंड पर एक काक पक्षी कृमि कीट ढूंढने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहा था, जो कृष्णवर्ण का था। ग्रीवा इधर उधर घुमाने वाला, बीच बीच में काँव काँव करता हुआ चित्कारने वाला। क्षण भर में मंडप पार कर राजभवन के चार चार सीढ़ियां में एक एक छलांग में चढ़ने लगा। अनेक वर्षों पहले चंपा नगरी से आने के बाद पिताजी का हाथ पकड़कर ये सीढ़ियां कितनी होंगी, इस कौतूहल से इनकी गिनती करने वाला बालक कर्ण क्षण भर में मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हुआ। अब उसी कर्ण को अच्छी तरह ज्ञात था कि सीढ़ियों की संख्या निश्चित ही 101 थी, क्योंकि अनेक बार वह उन पर चढ़ा उतरा था। घटनाओं के विविध रंग के फूल काल के अखंड धागे में गूंथते हुए नियति ने मेरे जीवन की पुष्पमाला कितनी जल्दी तैयार कर दी थी। बचपन की सुंदर सुंदर कलियां उसमें थीं, शिष्यावस्था की विद्या के प्रति निष्ठा से अर्धोन्मीलित पंखुड़ियां भी उसमें थीं। तरुणावस्था के शस्त्र, व्यायाम, सूर्याराधना आदि के चमकते हुए कालवत्तु उस माला में थे और मेरे अपमानित, संभ्रमित, उपेक्षित जीवन के सूखे हरे पत्ते भी थे, कलाहीन और विद्रूप। मेरा मन शरीरस्थ रक्त की गति से भी तीव्र गति से दौड़ने लगा। उसको एक ही धुन लगी हुई थी, राजसभा राजसभा। सभा के भव्य प्रवेश द्वार के पास आया। भीतर चल रहे के पासों का निर्णय देखने के लिए पागल बने प्रेक्षक गणों से वह ढका हुआ था। प्राणों को आंखों में समाकर सब लोगों ने अपनी आंखें मामा के हाथों में लिए हुए पासों पर लगा रखी थी। सेवक सेविकाओं के उस समुदाय में ही एक साधारण व्यक्ति की तरह दुशासन को खड़ा देखकर मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मेरी ओर पीठ किए खड़ा था। वह सभागृह में न बैठकर प्रवेश द्वार पर ही क्यों था? आज सभी बातें उल्टी हो रही थीं। प्रवेश द्वार के पास जाकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर मैंने कहा, दुशासन, तुम आज यहाँ कैसे खड़े हो? घुड़दौड़ के चपल घोड़े की तरह वह तत्क्षण मुड़ा। कौन? कर्ण? ठहरो, क्षण भर ही। तुम अभी यहीं रुको, जब तक दुख चल रहा है तब तक मैं तुमको यहीं रोके रहूंगा। इसीलिए भैया ने प्रातःकाल से मुझको यहाँ नियुक्त कर रखा है। क्यों? मेरे भीतर जाने से क्या प्रलय हो जाएगी? उसका प्रतिरोध मुझको असह्य लगा। कुरुओं के राजभवन में मेरा इतना स्पष्ट विरोध आज तक कभी किसी ने नहीं किया था। यह सब मैं नहीं जानता, परंतु आज मैं तुमको सभागृह में नहीं जाने दूंगा। अंगराज, मामा जब अंतिम पासा फेंक रहे हैं, अंतिम लड़ाई केवल एक ही पासा, मुझको रोकने के लिए प्रवेश द्वार घेरने के विचार से उसने दोनों हाथ फैला लिए, पूरा द्वार उसने घेर लिया। मैं अंगराज हूँ या बात दुशासन आज क्यों भूल गया है? इस पासे के दाव पर क्या क्या लगाया गया है दुशासन? एड़ी उठाकर सभागृह में जागते हुए मैंने उससे पूछा। पांचाली, उसने दरवाजे की दरार में अपने हाथ की उंगलियां अच्छी तरह फंसा कर मेरे सामने हाथों का घेरा ही तैयार कर लिया। पांचाली एक अहंकारिणी छत्राणी, उसके चरणों में कर्ण ने अपने जीवन का राजवस्त्र विनम्र भाव से अर्पण किया था, लेकिन उसने उसे तुच्छ पावड़ा समझकर उन्मत्त भाव से पैरों से रौंद डाला था। तीव्र गति से दौड़ते रथ में जाते समय आसपास के वृक्ष, लताएं, पर्वत आदि के चित्र अस्पष्ट होते हुए जैसे झटपट पीछे छूटते लगते हैं, वैसे ही अनेक घटनाओं के असंख्य चित्र मेरी आंखों के आगे प्रकट होकर क्षण भर में अस्पष्ट होने लगे। दुशासन, दूर हटो, उसके हाथ हटाकर एक ही झटके में मैंने हटा दिए। सभागृह में प्रवेश करते समय एक ही घनाघात बार बार सिर पर होने लगा, द्युत द्युत द्युत। उचित हो या अनुचित हो, परंतु मेरे ठुकराए हुए संतप्त मन को यदि उसी से शांति मिलनी हो तो फिर मैं उसको अनुचित क्यों कहूँ? और फिर मेरे साथ व्यवहार करने में संसार ने उचित अनुचित की निष्पक्ष कसौटी कहाँ रखी थी? इसीलिए मेरी इच्छा हुई कि प्रवेश द्वार से ही चिल्लाकर कह दूँ, मामा यादव, आज आपको जीतना ही चाहिए। जन समुदाय को छिन्न भिन्न करता हुआ मैं जल्दी आसन की ओर आगे बढ़ा। ठहरो ठहरो कहता हुआ दुशासन भी हाथ उठाए मेरे पीछे पीछे आने लगा। सभा के पश्चिमी भाग में पाषाण के चबूतरे पर बिछी हुई कोमल शैया पर बीच में द्युत का पट रखकर उसके दोनों ओर शक्ति मामा और युधिष्ठिर बैठे हुए थे। उल्टी पालथी मारकर मामा कान के पास हाथ ले जाकर पासों की कौड़ियों को हाथ की पोली मुट्ठी में निरंतर हिलाने लगे। उनके पीछे खड़े हुए दुर्मुख, दुरंजय, निशंगी, क्रात, अलम्बु, वातवेन आदि कुरु योद्धाओं की आंखें उनके हाथ पर स्थिर थी। उनकी दाई ओर बैठा हुआ दुर्योधन एकटक भीम की ओर देख रहा था। युधिष्ठिर के पीछे बैठे हुए भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जीवन में पहली बार विवश मुद्रा में सिर झुकाए हुए शायद अपने अग्रज भ्राता के बुद्धिभ्रंश का कारण ढूंढ रहे थे। आज, हाँ, आज पहली बार ही वे वह अनुभव कर रहे थे कि जन समुदाय के समक्ष सिर झुकाने में किसी योद्धा की कैसी मरण प्राय यातनाएं होती हैं। ऐसे अवसर पर बिखरते हुए मनरूपी पुष्प की पंखुड़ियां एकत्रित करना कठिन हो जाता है। चलो चलो चलो, साथ का दाव रहा। हाथ की कौड़ियों को हिलाते हुए कान के पास लाकर मामा ने जोर जोर से चिल्लाते हुए पासा फेंका, वैसे ही जैसे कोई शक्तिशाली मछुआ हाथ उठाकर मछलियों का जाल फेंकता है। यह सत्यानाशी खेल तुम अब बंद भी करोगे या नहीं? पासा पड़ते समय ही भीम बिजली की तरह युधिष्ठिर पर कड़का। कौड़ियां ऐसे काम गई जैसे बिजली की कड़कड़ाहट से तिनके कांपते हैं। दाव पड़ा। जनसमूह में से मार्ग निकालता हुआ मैं आसन की ओर आने का प्रयत्न करने लगा। युद्ध देखने में सब कुछ भूल चुके वे प्रेक्षक किसी की ओर ध्यान देने को तैयार नहीं थे। उसकी दृष्टि पट के साथ कौड़ियों पर लगी थी। एड़ी ऊंची कर प्रत्येक व्यक्ति पासों को देखने लगा। किसका दाव पड़ा? अखाड़े में शस्त्रार्थों के हाथ देखते समय इतनी उत्सुकता नहीं थी। कापिले नगर में शिवधनुष से मत्स्य भेद देखते समय भी इतनी उत्साह नहीं था जितने कि इस समय प्रत्येक आंख में उफन उफर कर झांक रही थी मृग नक्षत्र की मूसलाधार वर्षा की तरह। क्षुद्र कौड़ियों के आसपास सहस्त्र आंखें घिसटते हुए सहस्त्र जीवन। क्षण भर के लिए मुझे ऐसा लगा कि यज्ञ कुंड पर कीट ढूंढने का प्रयत्न करने वाले कौए की तरह ही जीवन भी असंख्य नगण्य और क्षुद्र बातों से पवित्रव्य ढूंढने का प्रयत्न करता रहता है। शायद देख दुर्योधन सात अर्थात सात ही। राजा दुर्योधन के हाथ पर ताली देते हुए मामा आनंदातित्रे से आसन की गद्दी पर उछल से पड़े। सभी कुरियुवराजों ने बड़े जोर से तालियां बजाई। खाट खाट खाट। मेरे कान के भी दो हाथ होकर एक दूसरे पर टकराने लगे। केवल विचारों की तालियां उल्टी सीधी, लेकिन उन तालियों की ध्वनि एक सी नहीं थी। कभी दुर्योधन की आवाज की तरह कर्कश, कभी मामा की आवाज की तरह चुभने वाली, कभी अश्वत्थामा की आवाज की तरह मधुर रस भरी, तो कभी पितामह की आवाज की तरह दृढ़ उपदेश युक्त तालियां, विचारों के अखंड अटूट तालियां। उन तालियों में मैं जैसे डूब ही गया। मेरी आवाज मुझको कभी सुनाई ही नहीं दे रही थी। चारों ओर ही अविरत गड़गड़ाती हुई तालियां। जैसे तैसे आसन के पास पहुंचा। सभागृह पर दृष्टि डालते समय मैंने यह विशेषता देखी कि पहले किसी अवसर पर सभागृह इस तरह ठसास भरा नहीं था। सिंहासन पर महाराज बैठे हुए थे। उनकी बंद आंखों के ताल पलक लाल पलक हिलडुल रहे थे। दूत के पास से देखने के लिए वे आंखें अधीर तो नहीं हो उठी थी। उनकी बाईं ओर बैठी हुई राजमाता गंधारी देवी का हाथ बार बार आंखों की पट्टी की ओर जाने लगा। सभा में क्या हो रहा है उसका उन राजा रानी को शायद कुछ पता नहीं था। मैंने सोचा कि अंधे राजा को अंधकार में टटोलने को विवश कर देने वाली आंखों वालों की राजसभा है या वर्षों से घुटती आई भावनाओं का स्वच्छंद विस्फोट। पितामह भीष्म, गुरुदेव द्रोण, कृप, विदुर, अश्वत्थामा, अमात विश्ववर्मा, सेनापति आदि के साथ यज्ञ कार्य के लिए दसों दिशाओं से आए हुए शौनक, भृगु, च्यवन, कर्ण, याज्ञवल्क, सुसाम, बालखित्य, सहस्त्रपाद, संदीपनी, शंपाक जैसे श्रेष्ठ ऋषिजन बैठे हुए मुझको दिखाई दिए। उनमें से एक विद्युत की कौड़ियों को नहीं रोक सका। यज्ञ का मुहूर्त कब का बीत चुका था। फिर भी तो फिर मामा के राजनीति का पाश सबको घेर ही लेगा। कौड़ियों का चमत्कार गुरुओं के कायापलट का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह बात ऋषि मुनियों को साक्षी बनाकर मामा ने सबके सामने सिद्ध कर दी। मामा गंधार देश के ऊंट की तरह उनकी चाल मुझको वह कभी सीधी दिखाई ही नहीं दी थी न लगी ही थी, परंतु उन्होंने अपने हाथ पर कौड़ियां लेकर यह सिद्ध कर दिया था कि राजनीति के मरुभूमि में उनके समान ऊंट ही श्रेष्ठ रहते हैं। मार्गदर्शक ठहरते हैं वक्र गति वाले केवल ऊंट। पट लपेटते हुए अपने कृत्य पर प्रसन्न होते हुए मामा विजय के उन्माद में बड़बड़ाने लगे। युधिष्ठिर गाय संपत्ति और सेवक सेविकाओं के साथ इंद्रप्रस्थ का राज तू हार चुका है। अपने साथ चारों भाइयों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास वाला दाव भी हार चुका है। और अभी अभी इस सात के दाव के कारण अपनी पत्नी को कुरुओं के दासी बनाने वाला दाव भी तू हार गया है। सब लोग तुझे धर्म कहते हैं। धर्म के अनुकूल चलने वाले युधिष्ठिर पास से जीतने का धर्म तुझको आज तक किसी ने क्यों नहीं सिखाया? अब तो कम से कम तुझको विश्वास हो गया ना कि दूत में इस सुवर्ण राज शकुनी का हाथ पकड़ने वाला एक भी दूत पटु इस आर्यावर्त में नहीं है। या शेष बचे हुए अपनी वृद्ध माता को भी दाव पर लगाकर तू आज इस शकुनी के कुशल हाथों की और अधिक परीक्षा लेना चाहता है? भाव में बार बार ऊंची करते हुए मामा ने कौए जैसी गर्दन मोड़ी। मेरे सारे शरीर में असह्य वेदना की विचित्र लहर सी दौड़ गई। गंगा के जल में 3 घंटे खड़े रहने के कारण कदाचित ऐसा बोध हुआ हो। शकुनी गदा घुमाता हुआ भीम सिंह की तरह मामा पर झपटा। अपनी माता का अशिष्टतापूर्ण उल्लेख उसको अच्छा नहीं लगा। भीम पीछे मुड़ो। युधिष्ठिर ने पहली बार मुख खोला। उसके पैर की अंगूठी की ओर देखता हुआ भीम क्रोध से लौट आया। दास लोग स्वामियों को अनादर से नहीं पुकारा करते। भीम तो कुरुओं का दास है। दास तेरे हाथ पर जो गदा है वह अब तेरी नहीं है। तेरी पत्नी पांचाली कौरवों के चरणों की एक तुच्छ दासी है। मामा ने हाथ में कौड़िया उछालते हुए भीम को निरुत्तर कर दिया। सिर झुकाकर वह अपने क्रोध से मामा पर झपटा था उतने ही शांति से अपने आसन पर बैठ गया। उसने अपना होठ चबा लिया था, उसके रक्त टपक रहा था। कुल के अनुरूप प्रतोद हाथ में लेकर घोड़ों के मालिश कर कहकर अखाड़े में चढ़ाने वाला वह भीम और नियति के एक ही थपेड़े से लड़खड़ा कर गिरने वाला वह भीम, उसकी नसों में दौड़ता हुआ रक्त कहाँ गया, कहाँ गया उसका पर्वत तुल्य पराक्रम। दासी पांचाली, गुरुओं के चरणों की तुच्छ दासी। दुर्योधन खिलखिलाकर हंस पड़ा, उसकी हंसी मुझको बड़ी विभत्स लगी। उसके अवरुद्ध मन का ज्वालामुखी शरीर के बांध तोड़कर निकलने लगा। अपने आसन पर बैठता हुआ सभागृह की एक एक वस्तु पर अपनी दृष्टि घुमाता हुआ अधिकारी तुसर में वह अपने युद्ध के लिए विशेष रूप से रखे गए सारथी प्रातिकाम से बोला, प्रातिकाम कुरुओं की उस दासी को इसी क्षण इस सभागृह में उपस्थित करो जिस स्थिति में हो उसी में। उसके शब्द ऐसे थे जैसे पर्वत पर से कोई पाषाण लुढ़क रहा हो। आज्ञा पार कर प्रातिकाम सभागृह से बाहर चला गया। आसन पर सही मैंने दृष्टि की ओर देखा, सदैव सूक्ष्मता से मेरे पैरों का निरीक्षण करने वाले उसकी दृष्टि उस समय अपने ही पैरों से हट नहीं रही थी। सदैव किसी न किसी को चीरने की ही दर्पयुक्त घोषणा करने वाली भीम की उच्छृंखल जीव उसी के दांतों के नीचे रगड़ खाने लगी। अर्जुन, अपने को अजय समझने वाला वह धनुर्धर हो सकता है कि आज अजय हो, परंतु मन की विवशता, दूसरे के कौशल की गुणग्राहकता और संभावना, मन के इन अत्युच्च भावों का साक्षात्कार उसने कभी कर्ण को कराया था क्या? कम से कम किसी भी उल्लेखनीय अवसर पर अपनी प्रशंसा करवाकर कीर्ति का वलय अपने चारों ओर लपेटते हुए उसने कभी भूले भटके यह भी ध्यान रखा था कि क्या कि उसी की तरह कवल धनुर्विद्या से प्रेम करने वाला कोई और भी हस्तिनापुर में है? बल्कि उसे कुल श्रेष्ठ सिद्ध होने वाले निषाद पुत्र एकलव्य का अंगूठा जब गुरुद्रोण ने गुरुदक्षिणा के मोहक संज्ञा देकर मांगा था, तब गुरुद्रोण का विरोध करने की अपेक्षा उसने क्या उसका समर्थन नहीं किया था? फिर क्यों हस्तिनापुर ने इस अर्जुन का आडंबर कर रखा है? केवल एक ही योग्यता के लिए, वह श्रेष्ठ कुरुकुल का युवराज है, क्षत्रिय है, इसीलिए ना आज कहाँ गया उसका सारा क्षत्रित्व? यदि मेरे स्थान पर वह होता तो असह्य विचार और अवहेलनाओं से उत्पन्न होने वाली कर्तव्य विमूढ़ता का भयंकर मानसिक स्थिति को वह कितने समय तक सहन कर सकता? शरीर में कौशल, गुणवत्ता और लगन होने पर भी अपेक्षित जीवन के कष्टप्रद केंद्र बिंदु के चारों ओर मेरी तरह वह कितने समय तक टिक सकता था? मेरे जीवन के सारे अनुभव कितने असह्य हैं, यह बात उन पांचों आत्मकेंद्रित गर्वोन्नत युवराजों को सिखाने के लिए नियति ने आज ऐसी घटनाओं का अद्भुत युद्ध आयोजित किया था। अब तो वे समझ ही गए होंगे कि अपमान मन के राजवस्त्र को निरंतर कुतरने वाला एक काला चूहा होता है। उपेक्षा गुणवान व्यक्ति के मन के शांत सरोवर को विक्षुब्ध करने वाली आंधी होती है। अवहेलना का अर्थ है वीर की सारी देह पर पड़ने वाला तप्त लौ रस। तिरस्कार के शब्द अर्थात कानों की बांबी में घुसने वाले विषैले भुजंग जीवन का यह असह्य स्वरूप जो कर्ण ने जीवन भर सहन किया था आज स्वयं पांडवों को भी मिला था। और वह द्रौपदी एक दासी, सुगंधी दासी। दासी का अर्थ है सूत कन्या से भी अधिक शुद्ध। ऐसे मन की दुदुम्बी और विचारों की डंडियां स्वच्छंद टकराने लगी। दासी, हाथ में वरमाला लिए हुए दासी, अंधे पतियों की दूरदर्शी दासी, दासों की पत्नी दासी, मेरी आंखों के आगे काले वलय में उस काली दासी का लज्जित मुखड़ा नृत्य करने लगा। महाराज, युवरागी सभागृह में नहीं आ सकती। प्रातिकाम स्त्रियों के कक्ष का चक्कर लगाकर लौट आया, पंख करे पक्षी की तरह हिसटता ठहरता। नहीं आ सकती? दासी स्वामी के लिए सब कुछ कर सकती है, उसको आना ही चाहिए। पाषाण फेंकने वाली भुशुंडे के दंड जैसा दुर्योधन आसन से तत्काल उठ खड़ा हुआ। क्या था उसकी आंखों में? अंगार, यज्ञकुंड, दधकता ज्वालामुखी। नहीं महाराज, वे रजस्वला हैं तथा हाल ही में ऋतु स्नात हुई। स्नानागार से स्नान करके बाहर आने के बाद उन्होंने अभी अपने केश भी नहीं संवारे हैं। सिर झुकाकर प्रतिकाम ने निवेदन किया, प्रतिकाम सारथी के रूप में रथ के घोड़े जितनी कुशलता से हाँकते हो उतनी कुशलता से तुम दुर्योधन की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। दुशासन, उठो और इस प्रतिकाम को दिखा दो कि सारथी में और क्षत्रिय में क्या अंतर होता है। जाओ और वह जैसी हो घसीट कर ले आओ। उसके स्वर वज्र की तरह कड़क रहे थे। दुशासन सभागृह से ऐसे निकला जैसे चांप से बाण। उस स्थिति में भी दुर्योधन ने सारथी कहकर प्रतिकाम का जो तिरस्कार किया था वो मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बोलने के उन्माद में वह शायद भूल गया था कि उसका मित्र कर्ण भी सारथी है। उसके उस कथन को सुनकर क्षण भर मेरी तो यह इच्छा हुई कि सभागृह से उठकर जो रथ मिल जाए उसी में माता पिता के साथ बैठकर एकदम चंपा नगरी चल दूं। मन ही मन में आसन से उठ खड़ा भी हुआ। एक ऐसे स्थान पर जाने के लिए जहाँ सारथियों को कोई भी इतनी घोर अवमानना न करे। छोड़ छोड़ चंडाल, मेरे शरीर को स्पर्श भी मत कर, सिसकियों के साथ आर्त पुकार करती आ रही थी। जिस द्वार से दिग्विजयी पूर्वजों ने प्रवेश किया था उसी द्वार से सभागृह में दुशासन प्रवेश करने का प्रयत्न करने लगा। विरोध करने के लिए प्रवेशद्वार की दरार में अपनी पतली उंगलियां फंसाकर चौखट से पैर अड़ाकर दासी द्रौपदी प्राणप्रण से उसे जूझने लगी। घास के ढेर से एक पूली जैसी खींची जाए वैसे ही उसको द्वार से खींच लाने के लिए दुशासन छीना छपटी करने लगा, परंतु गोह की तरह दरार में फंसी हुई द्रौपदी की उंगलियां टस से मस न हुई। दुशासन ने सहसा उसकी कमर में अपनी सशक्त भुजाओं का घेरा डाल दिया। मेरे सारे शरीर में घृणा की एक विचित्र सिहरन से दौड़ गई। उस सिहरन में सुतपुत्र कर्ण, धनुधर कर्ण, अंगराज कर्ण, मानी कर्ण सब कुछ क्षण भर में विलीन हो गया। शेष रह गया केवल गंगा में खड़ा रहने वाला अर्घदान करने वाला कर्ण। दुशासन, जिन भुजाओं में तूने पांचाली को पवित्र दिया, आज इस कुल सभा में बड़े बड़े ऋषिजनों के सम्मुख इस तरह लपेट रखी है, उन्हीं भुजाओं को जड़ से उखाड़ कर आकाश में फेंक दूंगा। और जिस छाती को उन्मत्त भाव से फुलाकर तू मेरी पत्नी को एक वस्त्रा और रजस्वला स्थिति में भी यहाँ खींच लाया है, तेरी वह छाती फोड़ कर उसका उष्ण रक्तमय सोमरस की तरह इन सबके सामने ही गटागट पीऊंगा। हाथ की गदा को पैरों तले पाषाण पर पटक कर भीम ने दुशासन के वध की घोर प्रतिज्ञा की। ऐसे ही बात मेरे देह के भीतर कोई गरज गरज कर कह रहा था। कौन था वह प्रतिदिन गंगा किनारे खड़ा रहने वाला सूर्य शिष्य कर्ण था वह? हाथ उठाकर वह मुझसे कह रहा था, कर्ण उठ, यह अन्याय है, सरासर अन्याय है, उठ और इस अन्याय को रोक। प्रकाश का दिव्य साम्राज्य छोड़कर अंधकार के भयंकर गर्त में तू भी कहाँ जा रहा है? प्रतिशोध, बदला, ये तो हल्के मन के तुच्छ चिथड़े हैं, फेंक दे उनको, उठ। खाट 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 कोड़े मारता हुआ बलगाएं खींचता एक संतप्त सारथी उस सूर्य शिष्य के सामने क्षण भर में तनकर खड़ा हो गया। अपने कान में लगे कोड़ों के दो तीन क्रूर आघात बिना किसी विचार के पहले तो उसने सूर्य शिष्य पर किए। गंगा के जल से परिपूर्ण अपनी भावअंजलि पर लात मार कर वह सारथी गरजा, इतने में ही अपनी पणकुटी भूल गया क्या? वह घोड़ों के माली स्वयंवर में विषैले बागबाणों का हृदय विदारक प्रहार समझ लेने दे, आज उसे भी एक बार समझ लेने दे कि सूत की अपेक्षा दासीहीन ही होती है। कशाघात और अर्घदान की अंजलि से गिरने वाली जलप्रपात सी प्रचंड धारा, इन दोनों के बीच मेरा मन क्षण प्रतिक्षण दोलायमान होने लगा। दृढ़ता, मूढ़ता, बहिरता और किंग कर्तव्य विमूढ़ता, इनका धुआं मन में इस प्रकार छा गया कि सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दिखाई देता भी था तो समझ में नहीं आता था, समझ में आ भी जाता था तो कहाँ नहीं जाता था। मैं कौन था वह सब मेरी समझ में नहीं आ रहा था। अर्धमृत थकी हुई गाय को पीठ पर लाद कर कोई सिंह जैसे अपनी गुफा में ले आता है, वैसे ही दुशासन उस पीड़ित श्यामोमणि सुगंधी दासी को कमर में हाथ डाले हुए सभा गृह के मध्य भाग रूपी जाल में ले आया। जैसे कोई मछली जाल से मुक्त होने के लिए निरंतर उछाल लगाती रहती है, वैसे ही वह अपने बंधन से उसके बंधन से छूटने के लिए निरंतर छटपटाने लगी। दुशासन के बाहों का घेरा उसकी कमर के चारों ओर नहीं था, वह मुझमें स्थित सूर्य शिष्य के कंठ के चारों ओर था। क्षण प्रति क्षण वह कसता चला जा रहा था। पात्र में खड़े होकर अर्घ के लिए अंजलि में लिया हुआ जल उस घेरे के कारण उस शिष्य के हाथ से हिलता दुलता पवितव्य के पात्र में गिरने लगा। पितामह, उसकी एक चीख छत को भी भेद गई। दुशासन, कौरवों के चरणों के इस दासी को हम थोड़ा सा ऊंचा स्थान देते हैं क्योंकि वह सुगंधित है। चरणों से कुछ ऊपर इस जंगा पर लाकर बैठा दो इसको। जंगा पर से अधरीय कुछ दूर हटाकर दुर्योधन ने जंगा पर हाथ मारा। पितामह ने शुभ्र केशांकित से झुका लिया। दुर्योधन, उन्मत्त होकर जिस अपनी जंगा को इस वर सभागृह में तूने अनावृत कर दिखाया है, उसी जंगा को समय आने पर इस गदा के एक ही प्रहार से चूर चूर कर दूंगा। भीम ने गदा उठाकर प्रतिज्ञा की। उसका मुख नागफनी जैसा तमतमा रहा था। भीम, दास के प्रतिज्ञाओं का बकवास से अधिक कुछ भी मूल्य नहीं होता। दुर्योधन को क्या हो गया था यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। वह जलते हुए मशाल जैसा लग रहा था, निरंतर आग उगल रहा था। मेरे शरीर में सारथी का और सूर्य शिष्य का भयानक द्वंद्व आरंभ हो गया। दोनों निर्दयता से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। कौन किस पर विजय प्राप्त करेगा इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अन्याय, एक रजस्वला व भरे सभागृह में गुरुजन और विद्वानों के समक्ष यह घोर अन्याय। विडम्बना, स्त्री की विडम्बना का अर्थ है पवित्रता की विडम्बना। विनाश, स्त्री के शील का विनाश का अर्थ है समस्त मांगल्य और सीता का विनाश। स्त्री के शील पर प्रहार करने का अर्थ है मानवता के मर्म पर प्रहार। इसी में से संघर्ष, जग की सभी कोमल भावनाएं दग्ध कर देने वाला संघर्ष। पैर का सर्वभक्षी यज्ञ कुंड कर्ण सूर्यशिष उठ। दुशासन के हाथ झटक कर सबसे चिल्ला कर कह दे कि यह अन्याय है, अत्याचार है, अधपतन है। मेरे अंदर का सूर्यशिष कंठ की नशे तांता व सारथी पर टूट पड़ा। हाथ की किरणों के खड्ग उसकी छाती में घुसड़ने लगा, परंतु उस सारथी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। उसकी त्वचा अभेद्य थी। बदला, प्रतिशोध, अपमान, अवहेलना, तिरस्कार, उपेक्षा, वंचना, अधिक्षेप कर्ण, यह और यही है तेरा जीवन। जीवन क्या जीवित मरण है? 10-12 वर्ष पहले एक स्त्री के बागबाणों से तू स्वयं ही मृत हो चुका है, अब तू किसी की क्या रक्षा करेगा? कर्ण, मत उठ, जो कुछ हो रहा है वह सब न्याय है। तुझ पर जो अन्याय हुआ था उसका निष्ठुर काल ने दुशासन और दुर्योधन की योजना द्वारा उस उन्मत्त स्त्री से उतना ही उग्र और क्रूर प्रतिशोध लिया है। कर्ण, इसी का पक्ष ले, समर्थन कर। सारथी कोड़े का प्रहार करने लगा। सूर्य से छिपने के लिए आश्रय स्थल ढूंढने लगा, इधर उधर दौड़ने लगा। बदला, प्रतिशोध, एक वीर को स्त्री से प्रतिशोध लेना क्या कभी शोभा देता है? स्त्री के शील की रक्षा करना ही पुरुषार्थ है। कर्ण, एक पल भी व्यर्थ मत जाने दे, आज तेरा मौन तेरे धवल चरित्र पर सदा के लिए कालिक पोत देगा। उठ आगे बढ़, दौड़ और दुशासन के हाथ मरोड़ दे। अरे जो आपत्तियों में भी विचार निष्ठ रहता है वही तो सच्चा मनुष्य है। सूर्यशिष्ट ने सारी शक्ति से अंतिम आक्रमण किया। नहीं, इस सभागृह में पितामह भीष्म, द्रोण, विदुर, अश्वत्थामा, कृपाचार्य आदि सभी तो बैठे हुए हैं, फिर तू ही क्यों उठ रहा है? तो फिर विष की परीक्षा लेना चाहता है क्या? दुर्योधन यदि उत्तेजित होकर सारी सभा में सूतपुत्र तू क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है कहकर प्रातिकाम की तरह तुझे भी दुत्कार दिया तो, अथवा जिस स्त्री पर तुझको इतना तरस आ रहा है वह स्त्री नहीं सूतपुत्र का संरक्षण मैं नहीं चाहती यदि कह दिया तो उस एक ही शब्द से तुझको ऐसी पीड़ा होगी जो हृदय में 100 बाण लगने पर भी नहीं होती। इसलिए कर्ण मत उठ, अपने स्थान से टस से मत हो। अंत में सारथी की ही विजय हुई। हाथ में लगी वलगाएं उन्मत्त होकर आकाश में फेंक कर वह आनंद से अर्घ देते हुए सूर्य शिष्य पर निरंतर कोड़िल बरसाने लगा। खाट खाट खाट, उफनता हुआ जल प्रवाह जैसे नौका को धकेलता है वैसे दुशासन द्रौपदी को दुर्योधन के आसन की ओर धकेलता हुआ ले जाने लगा, उसकी अनावृत जांघ पर बैठाने के। ठहरो दुशासन, अंधे पिता के पुत्र अंधे नहीं होते हैं बल्कि वे अपनी इतनी समर्थ आंखों वाले होते हैं कि जगत जिसे कभी नहीं देख सकता उसे भी देख सकते हैं। यह बात उस दासी को अभी दिखा दे, उसकी देह पर से सारे वस्त्र उतार दे और उसको विवस्त्र कर मेरी जंगा पर बैठा दे। लोहार के घन मारते ही जैसे तप्त लोहे की हार के चारों ओर चिंगारियां उड़ने लगती हैं वैसे ही दुर्योधन के मुख से शब्दों की चिंगारियां पर चिंगारियां उड़ने लगी। सभी ऋषियों ने कान पर हाथ रख लिए, आंखें बंद कर ली। दुर्योधन, राजमाता गंधारी देवी चीखी। दुर्योधन नीच, गदा उठाकर होठ चबाता हुआ भीम उसके आसन की ओर दौड़ा विक्षुब्ध शार्दुल की तरफ। पीछे लौटो भीम, सिर ऊपर उठाकर अपने स्थान से तिल भर भी न हिलते हुए युधिष्ठिर ने उसको पुनः पीछे लौटा दिया, केवल शब्दों से पैर की अंगूठे की ओर देखते हुए। जैसे उद्दीप्त बलवानल बढ़ता है वैसे ही प्रतिक्षण दुशासन द्रौपदी की ओर बढ़ने लगा। द्रौपदी के बाएं हाथ की कलाई अपने हाथ में से कसकर पकड़ ली जैसे खड्ग की मूठ पकड़ी जाती है। हाथ छुड़ाने के लिए पैर पटक कर जोर से चीखती हुई वह छटपटाने लगी। कितनी असहाय, कितनी विवश, छूटने के प्रयत्न में केवल एक पुष्पमाला से ही एकत्र बधे हुए उसके घने घुंघराले बंगवर्णी केश माला टूट जाने से बाल मुक्त होकर बिखर गए। उनको देखते ही मेरी आंखों के आगे घनीभूत अंधकार के अनगिनत वाले खड़े हो गए। मैं कहाँ हूँ, सामने क्या हो रहा है? अपमान, अत्याचार, अन्याय, क्या यह कुरुओं की राजसभा है या कामों को मदोन्मुत एवं बुद्धिहीनों की अंतपुरी है? आह, क्यों आया मैं हस्तिनापुर पे? एक सार्थिक रूप में चंपा नगरी में ही पलता रहता तो क्या बिगड़ जाता? कहाँ जा रहा हूँ मैं? अंधकार की अधपतन की भीषण खाई की ओर? किसने मुझे राजा बनाया? दुर्योधन ने, हस्तिनापुर के लोगों ने या अज्ञात नियति ने? कर्ण, फेंक देवा मुकुट और चलता बन हस्तिनापुर से चंपा नगरी की ओर। कोई गला फाड़ फाड़ कर मेरे भीतर चिल्ला रहा था परंतु मैं मुकुट फेंक नहीं सका। कितनी तीव्र इच्छा क्यों न हो लेकिन जीवन को कोई कभी पीछे नहीं लौटा सकता, उसने पलायन भी नहीं किया जा सकता। यह तो जैसा दिखाई दे वैसा कर देखना पड़ता है, जैसा होता है वैसा ही जीना पड़ता है। दुशासन ने एकदम पांचाली के अंशुक की चूनट पर हाथ डाला। मौखलाई हुई नागिन की तरह पलटकर द्रौपदी ने उसके सशक्त हाथ को किटकिटाकर काट लिया। तड़पकर उसने दोनों हाथ छिड़के। आकाश से जैसे बिजली छूटती है वैसे ही वह उसके हाथ से गरजते हुए छूट चली और सभागृह में चक्कर काटने लगी। व्याकुल होकर छटपटाने लगी, हाथों में छाती पीटते हुए चीखने लगी। मशाल, जलती मशाल जैसी दिखाई देने वाली वह श्यामला चक्राकार घूमने लगी। झंझावात जैसा दुशासन उस मशाल के पीछे पीछे सतत दौड़ने लगा। मशाल की ज्योति और भड़की। दौड़ दौड़ कर थकित पांचाली अंत में पितामह के आसन के सामने सीढ़ी पर खड़ी खड़ी धड़ाम से नीचे गिर पड़ी जैसे आंधी में असहाय कदली वृक्ष गिर पड़ता है। शोर करते हुए आंधी के साथ जैसे गवाक्ष का किवाड़ दीवार पर धड़ाधड़ टकराता है वैसे ही वह अपना मस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर निरंतर धड़ाधड़ पटकने लगी। उसके मस्तक पर लगा सौभाग्य कुमकुम पुछ गया। उसी में मस्तक से छूटी रक्त की पिचकारी की कुछ बूंदें उसमें मिल गई। स्नान के समय उसके घने केशों में संचित जलबिंदु प्रत्येक आघात के साथ चिटक कर सामने पाषाण की सीढ़ी पर पड़े रक्त में मिल गई। असह्य भाव से मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन आंखें बंद करने से क्या सत्य कभी छिप सकता है? मेरी बंद जागृत आंखों के आगे भी दो रक्त बिंदु और दो अश्रु बिंदु खड़े हो गए। क्षण भर वे थरथराए और फिर दूसरे ही क्षण उनके रक्त और अश्रु का प्रवाह बहने लगा। क्रमशः विशालतर होते हुए उन प्रवाहों की दो प्रचंड महानदियां तैयार हो गई। गंगा से न जाने कितनी विशाल, यमुना की अपेक्षा न जाने कितनी अधिक विस्तीर्ण ग्रस्ती हुई उनकी प्रचंड लहरें आसपास में मिल गई। रक्त और अश्रु की लहरें मिली हुई, उफनती हुई, ग्रस्ती हुई उस भीषण मिश्रण के विभत्स प्रवाह में अनेक योद्धाओं के सिर कमल तृणपात की तरह बहते जाते देखकर मेरा मन विषण हो गया, विषण हो गया, परंतु भय से थरथराया नहीं। पितामह, चीख की आर्तता से चौंक कर मैंने आंखें खोली। लजाओं के शब्द खिल रहे थे। मैं महाराज पांडु के इष्णुषा आपकी कन्या ही हूँ। पितामह उठिए, इस चांडाल के हाथ उखाड़ फेंकिए, आंचल पसार कर मैं आपसे भीख मांगती हूँ। कुरुओं की इस प्राचीन राजसभा में मेरे शील का व्यापार मत होने दीजिए। उठिए, कुरुओं के कुल की स्त्रियों के लज्जा रक्षण की परंपरा इस मदांध नीच को खड्ग दिखाकर दिखा दीजिए। परंतु पितामह, विश्व का मस्तक डंठल से टूटे हुए कमल की तरह झुका ही रहा। मैंने समझा था कि मेरे लिए अखाड़े में गुजने वाले धनुष टंकार जैसा उनका तीव्र स्वर पुनः राजसभा में गुजेगा, परंतु वह गुजा नहीं। पितामह भीष्म, कुरुकुल का मेरुदंड, ऋषिवर्य वशिष्ठ का अदित वेद शिष्य, बृहस्पति और शुक्राचार्य से शास्त्रार्थ अध्ययन करने वाला पराक्रमी क्षत्रिय चेवन भार्गव और मार्कंडे से धर्म का गंभीर ज्ञान प्राप्त करने वाला धर्मज्ञ शांतनु महाराज का साक्षात गंगा पुत्र काशीराज और उग्रायुद्ध के दांत खट्टे कर देने वाला वीर, जिनसे धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी, उन्हें जगदम्बे ने परशुराम को धनुर्युद्ध में पराजित कर सत शिष्य के रूप में गुरु से कुछ न कुछ श्रेष्ठ ही होता है सिद्ध करने वाला विख्यात धनुर्धरी, आजन्म ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला तेज का ज्वलित पुंज। परंतु वह भीष्म भी सिर झुकाकर चुप था। अपने जीवन चरित्र में वह पहली ही पराजय उस ज्येष्ठ वृद्ध ने क्यों स्वीकार की? क्या अमन्य सामर्थ्यवान पुरुषों के भी लज्जा लूटने के लिए कुशल नियति कुछ घटनाओं का आयोजन किया करती है? पितामह को स्तब्ध देखकर द्रौपदी की आंखें फटी रह गई। हाथों से छाती पीटती हुई वह चिल्लाई, महाराज, उसका आक्रोश सभागृह की छत को भेद कर कहीं आकाश को हिला न दे, मुझको ऐसा ही लगा। कानों के रंध्र रंध्र में बिजलियां कड़कने लगी। कर्ण उठ, उठ कर्ण, घंटों तक अर्घदान करने वाला सूर्य शिष्य उठ, अंधकार के साम्राज्य को जला दे। अरे बदला और प्रतिशोध तो चंचल मन की क्षुद्र कल्पनाए हैं, अवरुद्ध भावनाओं की खरबदाती दलदल होती है वह। दलदल में फंसे हुए हाथी की तरह तू भी आज हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा क्या? आंखों के आनंद से तेज का रस घंटों तक प्रतिदिन प्राशन करने वाले कर्ण, आज का क्षण प्रति क्षण तेरे और उन सबके भवितव्य की दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान। उठ, तेरे एक ही शब्द से सभागृह का स्वरूप तेरे विचारानुसार बदल जाएगा। महाराज, अपने अविचारी अत्याचारी पुत्र को रोकिए। राजमाता, मेरी लज्जा रखिए। मैं दासी बनकर कुरुओं की राजसभा को प्रतिदिन झाड़ने की तैयार हूँ, आपके राजवस्त्र धोने को तैयार हूँ, केशभूषा करने को तैयार हूँ। अपने हाथ महाराज के सामने सीढ़ी पर पटक कर महाराज महारानी कहकर वह विलाप करने लगी। उसकी कलाइयों के सुवर्ण कंकड़ आघात लगने से पिचक गए, परंतु राजदंड उठाया नहीं गया। बाज की तरह झपट कर दुशासन ने उसके मुक्त केशों की लटे मुट्ठी में पकड़ ली। कोलाहल करते हुए गिरने वाले प्रपात की तरह ठहाका लगाकर हंसता हुआ वह बोला, अय दासी, किसको चंडाल और नीच कहती है? मुझको। हाथ में पकड़े हुए केशों को उसने तीव्र झटका दिया। लता को झटका लगते जैसे उस पर कि फूल हिल डुल जाते हैं, वैसे उसका सिर हिल उठा। उसके सिर पर झटका कसकर बनकर सीधा मेरी पीठ में कहीं गंभीरता से उभर आया। अपने इन नपुंसक पतियों को चांडाल का दुशासन ठटाकर हंसता ही जा रहा था। ये सब घटनाएं देखकर मेरा संपूर्ण शरीर घृणा से रोमांचित हो उठा, लेकिन केवल क्षण भरे। उस दिन की गर्वोन्मत ग्रीवा यही थी, बारम्बार तिरस्कार से झटका देने वाली। यही वह आत्माभिमानी स्त्री थी पांचाली। स्त्री महान शिव का मनोहर रूप है। यह कहने वाले भावुक हृदयों ने यह सोचा भी नहीं होगा कि स्त्री समय आने पर प्रचंड विनाश का, कुरु विध्वंस का एकमात्र कारण भी बन सकती है, एकमेव कारण। दुशासन द्वारा केश पकड़ लेने पर वह उसी स्थिति में सभागृह की सभी सभासदों की ओर पुकार पुकार कर कहने लगी। दुशासन उसके पीछे पीछे घसीटता चला आ रहा था। वह कह रही थी, आचार्य गुरुदेव द्रोण, कृपाचार्य गुरुपुत्र अश्वत्थामन, आर्य आमात, आप सब चुप क्यों हैं? कोई तो उठो, अरे कोई तो उठो। उसके एक एक स्वर में हृदय विदीर्ण करने वाली आर्तता थी, परंतु मुझ पर उसका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। क्यों पड़ता? मेरा हृदय ही जैसे लोहा जैसा कठिन हो गया था। देह पर जो कवच था उससे भी अधिक अभेद्य, किसी के आक्रोश से द्रवित होने योग्य उसमें कुछ था ही नहीं। अब क्यों हूँ, कैसे हूँ? छाती पीटती हुई, हाथ फैलाकर आक्रोश करती हुई और प्रत्येक के आसन के सामने से आगे सरकने लगी। हस्तिनापुर के श्रेष्ठ पुरुषों, समरांगण में चमकने वाले वीर योद्धाओं, कुरुओं के मानबिंदुओं, मैं असहाय अबला पंचाली आज आंचल पसारती हूँ, मुझको अपनी सामर्थ्य भुजाओं का अभय दो। उठो, इस अभागनी भगनी के इन दुष्टों के हाथ से मुक्त करो। स्त्री के कोख से जन्म लेने वाले शक्तिशाली पुरुषों, एक स्त्री का विलाप आपके पुरुषार्थ को क्या जागृत नहीं कर रहा है? एक के बाद एक आसन पीछे छोड़ते हुए वह मेरी ओर आने लगी। आंसू की बूंदें बोलते समय हिलने वाले उसके मुख पर से फिसलती हुई कंचुकी में लीन हो रही थी। एक एक क्षण बाद ही वह मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी और हाथ पसार कर व्याकुल होकर कहेगी, अंगराज यह अभागी नबला आपके अजीय अभेद्य कवच की ओट में अपना मुख छुपा सके इतना स्थान है क्या? अत्याचार की इस लौह भित्ति को अपना आपका अभेद्य कवच ही क्या आज भेद सकेगा? अंगराज कर्ण पांचाली की पवित्रता की रक्षा क्या आज आप कर सकेंगे? बस मित्र दो ठहरे या प्राण जाए, परंतु अपने सामने हाथ फैलाकर खड़ी होने वाली पांचाली के पवित्र आवरण को स्पर्श करने वाले निर्दय निष्ठुर हाथ को खड्ग के एक ही झटके से काट डालूंगा। केवल एक क्षण बाद ही कर्ण कुरुओं के सभागृह का सदस्य नहीं रहेगा, दुर्योधन के प्राणों के लिए प्राण देने वाला मित्र उसका मित्र नहीं रहेगा। सिर झुकाकर मौन भाव से अन्याय का समर्थन करने वाला विवश आश्रित नहीं रहेगा, वह अपमान के अग्निकुंड में एकाकीपन से दग्ध होने वाला पराधीन सारथी नहीं रहेगा, प्रतिशोध के लिए तड़पने वाला साधारण कीट नहीं रहेगा। केवल एक क्षण बाद ही अपने आश्रय में आने वाली एक स्त्री की रक्षा करने वाला वह एक सूर्य शिष्य होगा, एक सत्य पुरुष होगा। मैंने अपने मन के सभी धागे दृढ़ता से कत्र किए, उन धागों में सूत पुत्र कर्ण, कुरुओं का योद्धा कर्ण, अपमानित कर्ण, प्रतिशोध के धधकता कर्ण, इन सभी को एक जगह कसकर बांध दिया और मैंने उसको सीधे शरीर के कोने में फेंक दिया। किरणों के असंख्य घोड़े दौड़ाता हुआ मेरे अंतस का सूर्य शिष्य कर्ण खड़ा हो गया था हर अवसर का सामना करने के लिए। एक क्षण बाद जो नाटक होगा वह सचमुच ही सबको प्रचंड आघात देने वाला सिद्ध होगा। विरोध के लिए कुरुओं की पूरी सभा ही यदि खड़ी हो जाती तो भी किसी का भी हाथ कर्ण के पीछे खड़े हुए पांचाली पर नहीं पड़ सकता था। उसमें स्थित दया का खोखला अभिमान नहीं रहेगा, पांडवों के प्रति दया की प्रतीति अब नहीं रहेगी, अपने पौरुष के प्रदर्शन का तो उसमें नाम भी नहीं होगा, वह तो आश्रयार्थी को दिया गया केवल एक अभयदान रहेगा। केवल अभयदान कर्ण मेरी लज्जा रखो, कहकर हस्तिनापुर की कोई भी साधारण स्त्री यदि त्रस्त होकर मेरी ओर दौड़ती आती तो हर समय और हर अवसर पर मैं उसको यही दान देता, फिर यह तो पांचाली थी, अपना जीवन दान करके भी मैं उसकी रक्षा करता। एक हाथ फैलाकर दूसरे हाथ से दुशासन को धकेलती हुई वह एक के बाद एक आसन के सम्मुख आक्रोश करती हुई आगे सरकने लगी। प्रलय की महानदी में जैसे कोई देवदारु वृक्ष लुढ़कता हुआ चला आता है, वैसे ही दुशासन उसकी विपुल केश राशि को पिंडलियों तक लंबी लटों के साथ दिखाता हुआ खींचता हुआ चला आ रहा था। वह एक स्त्री थी, लेकिन दुशासन जैसा द्वंद्व योद्धा भी उसे जरा भी वश में नहीं कर पा रहा था। यह दुशासन के पौरुष को ज्वलंत चुनौती थी जिसे वह सह न सका। चिढ़कर बौखलाया हुआ दुशासन उसकी लटों को अपने कंठ के चारों ओर लपेट कर द्रौपदी की गर्दन को बारंबार झटके देने लगा। वह उसे आहत करने का क्रूर प्रयत्न कर रहा था। सभागृह में द्रौपदी के अतिरिक्त शायद उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सुनाई भी नहीं पड़ रहा था। उड़नाम चित्रचाप दृढ़वर्मन निषंगिमिन महाबाह विशालाक्ष चित्रवर्मन सोमकीर्ति आदि प्रत्येक के सम्मुख विलाप करते हुए वह उनके वीरत्व को पुकार रही थी। दयनीय अतिशय दयनीय मुद्रा में वह क्रंदन कर रही थी जैसे आंधी में गए जंगल में कोई गाय रास्ता भूल गई हो, कोई भी उठकर खड़ा नहीं हो रहा था। मेरी दाईं ओर बैठे युवराज पद्मनाभ को उसने व्याकुल स्वर में पुकारा, युवराज पद्मनाभ हम। अखाड़े में सहस्त्रों मुखों ने अर्जुन का और मेरा जो जय जयकार किया था वह भी इतना तीव्र नहीं था जितना तीव्र उस अकेली अबला का आक्रोश, परंतु पद्मनाभ ने सिर नहीं उठाया। अगले ही क्षण वह डबडबाई आंखों से मेरे आसन के सामने आकर खड़ी हो गई। मेरे जीवन में ऐसे अनेक अविस्मरणीय क्षण थे जिन्होंने मेरे जीवन में आमूल परिवर्तन कर दिया था। उन क्षणों से ही मेरा जीवन रेखांकित था, उन सभी क्षणों से यह क्षण भी अत्यंत महत्वपूर्ण था, महान था। अचानक मेरे कुंडल सरसराने लगे और मेरे सम्मुख दयनीय अवस्था में खड़ी थी, इसलिए नहीं एक आवेश में वह मुझे पुकारने वाली थी, और फिर क्या होना था यह मैं स्वयं ही नहीं कर सकता था। आसन छोड़कर सीधा मध्यस्थान पर झपटने वाला था मैं। क्षण भर के लिए ही उसने मेरी ओर देखा, आत्मोन्नत छत्राणी का सदा विद्यमान रहने वाला सीधा साधा भाव भी उसकी आंखों में नहीं था मुझको ऐसा लगा, परंतु केवल क्षण भर के लिए ही। आसन से उठता हुआ कमर में लपेटते खड़ग की मूठ पकड़कर मैं तनकर खड़ा हो गया। अब उसके ओठों से उसका एक ही शब्द बाहर आने वाला था, अंगराज, और दूसरे क्षण में दुशासन से उसी प्रकार जूझने को तत्पर हो चुका था जैसे जरासन से जूझा था। मुझको खड़ा होते देखकर पितामह आमात्य अश्वत्थामा कृपाचार्य गुरुद्रोण सबने आश्चर्य से अपने सिर उठा लिए। सारंग पक्षियों के झुंड जैसे मेरे शरीर के रक्तकण उछाल रहे थे। विश्व में गंगा तट पर तप्त होकर जाने वाले पाषाण की तरह मेरा शरीर अतिशय संतप्त हो गया था। कानों में शंखना जैसी अज्ञात सीटी गुज रही थी। मैंने अपने कान उस शब्द की ओर लगा दिए, परंतु एक शब्द का भी उच्चारण न कर वह सिर झुकाकर जैसी की तैसी आगे बढ़ गई, चुपचाप भीतर ही भीतर सिसकती हुई न जाने क्यों। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर सहस्त्र बिजलियां टूट पड़ी हो। वह आगे क्यों बढ़ गई, किस भावना से, क्या यह सोचकर कि एक छत्राणी एक सुतपुत्र के आगे दीनता से अपना हाथ क्यों फैलाए। फिर मस्तिष्क की बामी में असंख्य प्रश्नों के भुजंगों ने फन खड़े कर लिए। तूफानी घोड़ों की तरह विचार दौड़ने लगे। उनकी टापों के नीचे संयम, विवेक, उदारता, सहृदयता आदि संसार के सर्वश्रेष्ठ सद्गुणों के रक्त से लथपथ शरीर गत प्राण होने पर तड़पने लगे। इच्छा हुई कि दोनों कानों पर हाथ रखकर गला फाड़कर चिल्लाकर उससे कह दूं इतनी जोर से कि उस आवाज से देह का यह अभिद्ध कवच भी तड़क जाए कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं, मैं अंगराज हूं। हाथ में खड़गी की मूठ थरथराने लगी। खड़ा रहना असंभव होने लगा। मैं खड़ा खड़ा यह आसन पर पड़ा। मन, शरीर, चेतना सबके सब बधिर सुन्न हो गए थे। जैसे जिस योद्धा के शरीर पर अभिद्ध कवच दिया, उसके मन पर भी अभिद्ध कवच देना नियति क्यों भूल जाती है? अपने स्वयंवर में उचित अनुचित सब कुछ कहकर उसने मेरे स्वाभिमानी मन के चिथड़े चिथड़े कर दिए थे, और आज कुछ न कर उसने ठोकर के एक ही आघात से उन चिथड़ों को धूल में फेंक दिया था। देह पर अतलसी राजवस्त्र और सिर पर मुकुट से सुशोभित सभागृह में बैठा हुआ कर्ण उसको एक ऋषभ की अपेक्षा अधिक कुछ और क्या बिल्कुल भी नहीं लगा। साधारण से साधारण युवराज के सामने फैलाए गए हाथ को अंगराज कर्ण के सामने फैलाने में उसका अपमान हो रहा था, या क्या वह यही बताना चाहती थी कि प्रातिकाम और कर्ण में कोई भेद नहीं? अरण्य में दावानल फैलने पर जैसे हाथियों के झुंड चीं चीं करते हुए एक दूसरे को गुस्सा देते हुए अंधाधुंध दौड़ते हैं, वैसे ही असंख्य विचार मेरे मस्तिष्क में दौड़ने लगे। विचार और शंकाओं के निरंतर प्रहार से मस्तक का कुंभ कहीं तड़क न जाए, सोचकर मैंने अपने दोनों हाथों से कस लिया। ठुकराई गई हाँफती हुई विशस्त कुंतला उस दासी को सभी आसनों के सामने से दुशासन को शक्ति लगाकर सभागृह के मध्य भाग में ले आया। दासी, हाँ दासी ही, सभी कुल युवराजों के लिए वह दासी थी। द्यूत ने यह निश्चित कर दिया था, परंतु मेरे लिए वह दासी से भी अधिक हीन थी। जीवन के सत्यों ने यह निश्चित कर दिया था। वह घोर क्रंदन करते हुए समस्त सभागृह को और अपने पतियों को चुन चुन कर दोष दे रही थी। दुशासन का हाथ चुनटों पर पड़ न जाए इसलिए कमर से झुककर शरीर की गठरी सी बना रखी थी। उसकी मर्मभेरी शब्दों को सुनकर किस किस को क्या क्या लगा यह तो मैं नहीं जानता, परंतु मेरा मन यत्किंचित भी द्रवित नहीं हुआ। और क्यों द्रवित हो? सूतों के कान नहीं होते? मन तो होता ही नहीं, वो भी तो पत्थर का होता है, धूल में पड़ा हुआ है, जो चाहे वही उसको ठुकरा सकता है। एक ही स्थान पर चक्कर काटते हुए अंतिम प्रयत्न करती हुई वह जो मन में आ रहा था वही कह रही थी, कड़कड़ाती बिजली जैसी। कहो कुरुओं की इस प्राचीन राजसभा में सिंह किसी छाती का एक भी सत्यप्रिय वीर पुरुष क्या कोई है आज? जिस सभा में वृद्ध न हो वह सभा नहीं, जिन वृद्धों में अधर्म का प्रतिकार करने वाला धर्म न हो वह वृद्ध नहीं, और जिस धर्म में सत्यासत्य का विवेक नहीं रहा वह धर्म नहीं, बताए कोई भी बताए। जिस पति ने अपने को दाव पर लगाकर अपना जीवन दूसरे को सौंप दिया हो उसको अपने बात पत्नी को दाव पर लगाने का अधिकार ही क्या था? धर्मराज, धर्मराज कहे जाने वाले मेरे पति भी धर्म के अनुसार ही सबको समझा दे कि अपने बाद मुझको दाव पर लगाने का अधिकार उनको किस धर्म ने दिया था? स्त्रियों को सम्मान केंद्र मानकर उनके शील की रक्षा करने के लिए रक्त की नदियां बहा देने वाले किसी न किसी नर शार्दुल द्वारा विभूषित आसन पर आप में से प्रत्येक व्यक्ति बैठा हुआ है। इन निर्जीव आसनों का एक एक टुकड़ा आपसे यही कहेगा कि स्त्रियों का शील दूत की गोट नहीं होता जिसको कि दूत के पट में लपेट दिया जाए, जब चाहे हाथ में लेकर फेंक दिया जाए, ऐसी पासी की कौड़ी नहीं होता। स्त्री का अपमान करने वाला हाथ समाज और राज्य को विनाश के गर्त में ही डाल देगा। आप में से प्रत्येक का जन्म एक स्त्री की वत्सल कुच्छी से ही हुआ है, यह भी याद है क्या आज आपको? कहो, अपनी माता के स्तन के कणों को अपने होठों पर स्पष्ट स्मरण करने वाला एक भी सुपुत्र आज इस सभा में जीवित है क्या? क्षण भर के लिए चारों ओर शमशान शांति छा गई। दुशासन की मुट्ठी ढीली पड़ गई। शांत जलाशय में जैसे कोई खवल मछली झुंड से अलग होकर उछल उछल कर जल के पृष्ठभाग पर आ जाए, वैसे ही दुर्योधन का भाई विकर्ण उठा। हाथ उठाकर उसने अपने से बड़े दुशासन को अधिकार पुरस्वरों में बोला, दुशासन, पांचाली के शरीर को स्पर्श भी मत कर। सभी जन याद रखें कि महारानी तप्ती, नलिनी, भूमिनी, सुदक्षिणा, विरजा, देवयानी, गंगा और सत्यवती द्वारा सुशोभित की गई राजसभा है। यहाँ राजस्त्री पर अन्याय करने का अर्थ है मंदिर में साक्षात देवता की प्रतिमा को पैरों तले रौंदना। जो पति स्वयं को द्वित में हार चुका हो उसको अपनी पत्नी को यहाँ दांव पर लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है। अन्याय के सहारे चलने वाली राजव्यवस्था, समाज या धर्म विश्व के प्रवाह में टिक नहीं सकती। अंधे और मूर्ख सभासदों, एक रजस्वला, एक वस्त्रा स्त्री पर वीरों की सभा में यह सरासर अन्याय किया जा रहा है। आप लोग महाराज आयु, नहुष, यजाति, पुरु, हस्ति, अजमीर, सम्मरण, कुरु, जहनु, प्रतीप और शांतनु के वंशज हैं, क्या यह बात एक को भी याद रही है? बताओ, अपने किसी पूर्वज के कार्यकाल में इतना घृणीय दिवस क्या इस सभागृह में कभी देखा था? इस सभागृह में दिग्विजय और अश्वमेघ के घोड़े भेजने पर हिमालय को बांधने वाले विचार विमर्श किए गए। उसी सभागृह में आज एक अबला की लज्जा की रक्षा के लिए शिक्षकियां गूंज रही हैं और वह भी कुरुकुल की ही एक इष्णुषा की। धन्य है उन कुरुओं का यह राज सिंहासन, धन्य है ये योद्धा। छोटा होकर वे वृद्ध कहे जाने वाले ज्येष्ठों से मैं यह स्पष्ट पूछता हूँ, समरांगण में चमकने वाले उनके खड्गों में आज क्या जंग लग गई है? पितामह, महाराज, आचार्य, गुरुदेव, आमात्य, कृपाचार्य और सबको धर्म ज्ञान देने वाले तेजस्वी ब्रह्मज्ञ ऋषिजन आज प्रेमवत प्रेतवत चुप क्यों बैठे हैं? मानो गाज गिर गई हो। मैं युवराज विकर्ण कहता हूँ कि एक पतिव्रता का क्रंदन, विलाप और सिसकियां, इनका रौद्र भैरव संगीत लेकर बहने वाले ये दधकते आंसू गंगा के भयंकर बाढ़ का रूप धारण कर जब गरजते हुए आएंगे, तब यहाँ के जिन आसनों की अभिलाषा से तुम सब मौन धारण किए बैठे हो, उनमें से एक भी आसन अपने स्थान पर नहीं टिका रहेगा। पतिव्रता का न्याय का अर्थ है पतिव्रता पर अन्याय, पतिव्रता का अपमान अर्थात पुरुषार्थ का अंत। सभा के सदस्यों को घूर कर देखता हुआ वह मृग नक्षत्र की मूसलाधार वर्षा की तरह शब्दों की धाराएं बरसाने लगा। समस्त राजसभा में वह अकेला ही उठा, यह सोचकर उसके प्रति मुझको अभिमान हुआ, लेकिन वह केवल क्षण भर के लिए ही। उसकी शिष्टता सत्य पर आधारित थी क्या? वह किसको प्रतिव्रता कह रहा था? जिसने जिन तपति, वीरजा, सुदक्षिणा, देवयानी आदि विख्यात महारानियों का उल्लेख किया था, उसके चरणों में भी बैठने की योग्यता इस पंचाली में थी? जिसने आज समाज संरक्षण की सभी रूढ़ियां ताक में रखकर एक ही देह से पांच पतियों के साथ रमण किया था? इनमें से किस महारानी ने एक से अधिक पति चुनकर पतिव्रता का महान आदर्श हस्तिनापुर में प्रस्तुत किया था? अपने गुरुजनों की शारीरिक कमी पर खिलखिलाकर निर्दयता पूर्वक व्यंग करने का कभी किसी ने साहस भी किया था? कुल की ध्वजा हाथ में उठाए हुए हर समय हीन हीन कहकर उसकी तरह उन्होंने किस वीर को ठुकराया था? पांचाली प्रतिव्रता नहीं है, वह वारांगना है, उल्टा है, कलंकिनी है। जैसे विशैला भुजंग पुपकार कर उठता हो, वैसे मेरे भीतर का सारथी बौखला कर उठ खड़ा होगा, कर्ण ठहर, कर्ण ठहर। कहने वाले सूर्य शिष्य के मस्तक पर पैर रखकर वत्तक्षण खड़ा हो गया और फुफकारता हुआ कहने लगा अंधाधुन, विकर्ण तू तो मूर्ख है। सभागृह में पितामह, महाराज, आचार्य, आमात्य सभी तो उपस्थित हैं, अभी तो कुछ कह नहीं रहे हैं। यह जानकर भी तू गला फाड़ फाड़ कर ऐसे चिल्ला रहा है जैसे धर्म की धूरी अकेले ही तेरे ही कंधों पर हो। पतिव्रता, पतिव्रता कहकर तू बार बार चिल्ला चिल्ला कर जिसका उल्लेख कर रहा है, वह कदापि पतिव्रता नहीं है। एक ही देह से पांच पतियों से रमण करने वाली पांचाली विलासिनी है, कलंकिनी है, आरंगना है, कुलटा है। ऐसी स्त्री पांच की अपेक्षा 105 पति ही पसंद करती है। दासी की इतनी लज्जा तो होती है कि वस्त्र पहने रहती है, उसमें विनम्रता होती है, लेकिन कुलटा में यह सब नहीं होता। दुशासन, वह सभा में सवस्त्र आई तो क्या और विवस्त्र आई तो क्या, एक ही बात है। लज्जाहीन कुलटा की लज्जा का हरण ही क्या होगा? विकर्ण, जो तुम्हें ज्ञात नहीं है उसमें टांग मत अड़ाओ, नीचे बैठो। दुशासन, आज तक जो पांडवों के असमर्थ कटी से लटका रहा है, वह सांवला खड्ग वस्त्र के म्यान से बाहर खींचो। खोतर से किकियाते हुए बाहर निकलने वाले तोतों के झुंड जैसे शब्द मेरे मुंह से बाहर निकले, सभी दिशाओं में दौड़ने वाले हरे वर्ण के। मैंने जी भर कर कहा, मद्य पिए हुए मत मद्यपी की तरह वर्षों से अवहेला में पड़े हुए मन की थाली में प्रतिशोध के धधकते अंगारे लेकर मैंने वह थाली द्रौपदी के उन्नत मस्तक पर उलट दी। यह था प्रतिशोध। प्रतिशोध मन की एक प्रमुख क्रिया नहीं है, वह केवल प्रतिक्रिया है। जब दो मनों के स्वाभिमान के बले एक दूसरे को काटने लगते हैं, तभी प्रतिक्रिया की विकर्ण रेखाएं निर्मित होती हैं। संसार उनको प्रतिशोध कहता है, क्रूरता कहता है। दुशासन, मानो मेरे शब्दों की ही प्रतीक्षा कर रहा था। केले के मध्य भाग पर से जैसे उसकी पपड़ी अलग की जाती है, वैसे ही द्रौपदी के अंशुक को हाथ से पकड़कर दुशासन ने उसका आंचल खींच लिया। छाती पर कंचुक पर हाथ रखकर वह चीख उठी, अच्युत, मिलिंद, माधव, केशव, गोपाल, गुड़ाकेश, घनश्याम, दौड़ो, श्रीकृष्ण, मधुसूदन, धरती बनकर बीच में फट कर इस अभागिन पांचाली को अब उद्रस्त कर लो। यज्ञ कुंड की अग्नि बन जाओ और इस यज्ञ सेना को उसमें दग्ध करके उसके जीवन यज्ञ की समाप्ति की तप्त राख इन अंधे अधमों के मुंह पर पोत दो। मेरे इन असहाय अश्रुओं की यमुना के महावाड़ में इन कामुकों के मदांत मस्तक तब तक डुबो रहो जब तक इनके प्राण न निकल जाए। मेरे इन उष्ण श्वासों से कुरुकुल के सघन अरण्य में छिपे हुए इन विषैले भुजंगों को भस्म कर दो। कंस का वध करने वाले केशव, शिशुपाल का कंठनाल छेदने वाले श्री कृष्ण, गोवर्धन उठाने वाले गोपाल, शतधन्वा का शिर छेद करने वाले श्याम सुंदर, विदुरथ को विदेह करने वाले वासुदेव, दंत वक्र को दग्ध करने वाले द्वारकाधीश, नरकासुर को नष्ट करने वाले नंद किशोर, बाणासुर के बाहुओं को तोड़ने वाले ब्रह्मांड नायक पौंड्रक को छठी का दूध याद दिलाने वाले पुरुषोत्तम, शाल्व सहित श्रीघात का, श्रीगाल का, अंत करने वाले शशिकिशोर दौड़ो त्रैलोक को संभाल लेने वाली अपनी मुरलिका के रिक्त अंतस में इस दीन एकाकी असहाय अबलानाथ पांचाली को भी संभालो। दूरदर्शन सुदर्शन की सर्वसंहारक शक्तिमान शलाकाओं से सभा के इन स्तब्ध शिष्यजनों के सिर आज उड़ा डालो। कृष्ण, अरे तुम में आज अपनी यशोदा देवकी के मातृत्व के प्रति आस्था रह गई है या नहीं? मातृत्व के महत्व मंगल मंदिर के महाद्वार पर मस्तक चुकाने वाले अपने तेजस्वी वृष्णि कुल की लज्जा क्या तुम में है भी अभी? यदि इस विश्व का विसर्जन घनघोर काले बादलों में ही कराना चाहते हो तो आज इस सूर्य का महादीप अपनी फूंक से बुझा दो और कौरवों के श्यामादासी को उस अंधकार में डुबा दो। नहीं तो फिर दौड़ो, यमुना की गरजती हुई लहरों पर से दौड़ते आओ। कर्कश कठोर रव करते हुए झंझावात के साथ दौड़ते आओ। आकाश की नीली छत पर से, पाताल की अनंत रिक्तता से, दशों दिशाओं से दौड़ो दौड़ो दौड़ो। आवेग से वह वक्ष पीटने लगी। उसके आक्रंदन से मेरे कानों के कुंडल क्षण भर थरथरा उठे। पहली बार मेरा सुवर्ण कुंभ जैसा स्वच्छ कवच रोमांचित हो उठा। आंखों के सामने काली लहरों का प्रचंड सागर खौलने लगा। उन पर्वत तुल्य लहरों के थपकड़ों से मैं जिन तिनके की तरह मेरा मस्तक जोड़ने लगा। मेरे पैर थर थर कांपने लगे। थपेड़े बंद नहीं हो रहे थे। उनके अविरत आघातों से मेरे मन के कंडल कुंडल टूट कर लहरों के साथ बहते किनारे की दलदल में पड़े हुए मुझको स्पष्ट दिखाई दिए। समुद्री पवन जैसे दुशासन को उसका विलाप पक्षिणी की चिचियाहट जैसा लगा और शायद सुनाई भी नहीं दिया। केले के वृक्ष को जड़ से उखाड़ने के लिए उतावले झंझावात की तरह वह हाथों से पकड़े हुए आंचल को एक ओर सरासर खींचने लगा। अपने मुख को दोनों हाथों में छिपाए हुए एक श्यामला स्त्री उस वस्त्र के साथ भंवर की तरह फेरने लगी। उसकी देह पर अंशुक के दो ही परत शेष रह गए, केवल दो ही, और मेरा मन अपनी व्यवस्था से तिलमिला उठा जैसे किसी ने उसको हिमालय के अत्युच्च शिखर से धकेल दिया हो। कोई सारे शरीर में त्रिशूल भोंक रहा था। पांचाली के स्थान पर सभागृह में विशाली खड़ी है। इस कल्पना मात्र से भयंकर भिक्षु मेरे सारे शरीर में डंक मारने लगे। मूसलाधार वर्षा में धराशायी होने वाली जीर्ण पर्णकुटी की तरह मैं लड़खड़ाकर आसन पर गिर पड़ा। ऐसा आभास हुआ जैसे पैरों में शक्ति ही न हो। क्षण भर पहले का क्रोध तिरस्कार प्रतिशोध इनकी दीवार जैसे ढह गई। क्या कहा मैंने, किसके लिए कहा, किससे कहा? मन की गुफा में भीतर छिपने के लिए आंखें मीच कर मैं इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन विशाली मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। विशाली, हाँ विशाली ही, मेरे पीछे दौड़ने वाली विशाली, एकाकी रजस्वला सुस्नात विशाली, बिखरे हुए बालों वाली, क्रंदन करने वाली, मुख दोनों हथेलियों से ढक लेने वाली विशाली, अंगराज अंगराज कहकर चीखने वाली विवस्त्रा विशाली। पांचाली के स्थान पर विशाली को देखकर मैंने तत्क्षण आंखें खोली। खुली जागृत आंखों के आगे भी क्षण भर में पांचाली और क्षण में विशाली दिखाई देने लगी। पांचाली विशाली, विवस्त्रा पांचाली, आह विवस्त्रा विशाली, विशाली आह, उसके शरीर को वस्त्र से ढक देना चाहिए। कंधे पर पड़ा उत्तरीय हाथ भी लेकर मैं पुनः आसन से उठा। इतने में ही जैसे विजयी सेना पराजित शत्रु के बचे कुचे शिविरों को नष्ट करने के लिए जय घोष करती हुई घुसती चली आती है, वैसे ही मुरली के रौद्र भयानक स्वर न जाने कहाँ से सभागृह में घुस आए। उसके बाद ही सहस्त्रवाद्यों की हृदय वेदी मिश्रित ध्वनि गूंज उठी। मुझको रासोई यज्ञ की याद आई। क्या हो रहा था यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मानो मेरी सारी बुद्धि को काट मार गया था। वाद्यों के सरों से सबके मन कांप उठे। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं, आकाश से, पाताल से या दशों दिशाओं से, कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था। छत में प्रकाश के लिए बनाए गए थाली जैसे गोल छिद्र से एक प्रकाशपुंज सीधे भीतर आया और पांचाली के समस्त अंग पर फैल गया। उसको देखते ही मुझको सुदर्शन का स्मरण हो आया। श्रीकृष्ण की नीलवर्णी आकृति आंखों के आगे खड़ी हो गई। क्या होगा दुशासन का शिशुपाल और मेरा भी? वाद्यों के कोलाहल से सबका मन भय से कांप उठा, परंतु दुशासन का उन्माद और अधिक बढ़ गया। किसी की ओर ध्यान न देकर वह हाथ में पकड़े हुए वस्त्र को इस प्रकार खींचने लगा जैसे घोड़ों के बलगाएं खींच रहा हो। पानी के भौर में पड़ी हुई सूखी लकड़ी की तरह वह वस्त्र के साथ मंडलाकार घूमने लगी और समस्त सभागृह को प्रचंड आघात लगा। द्रौपदी के शरीर पर एक अन्य रक्तवर्णी अंशुक था जिसकी बुनाई उसके नीलवर्णी अंशुक में गुथी हुई थी। राजा की भावना से दुशासन के नेत्र आरक्त हो उठे। वाद्यों की ध्वनि क्षण प्रति क्षण बढ़ती ही जा रही थी, फिर भी दुशासन ने उन रक्तवर्णी अंशुक को हाथ से पकड़ लिया। मैं कौन हूँ, पांचाली कौन है, या कुरुओं की सभा है, यह सब मैं भूल कर मैं उस अभूतपूर्व गूढ़ दृश्य को चकित मूढ़ सा एकटक देखता ही रह गया। मेरे हाथ में उत्तर ये थरथराने लगा। यह क्या किया आज मैंने, कहाँ चला गया है, क्या कह गया मैं? सरसर सरसर खड्ग से भी अधिक चपलता से हाथ चलाते हुए दुशासन अंशु खींचने लगा। परंतु जैसे गोष्ठ से अरण्य की ओर जाने वाली गायें एक दूसरे के अंग को रगड़ती हुई द्वार से बाहर निकलते हैं, वैसे ही नीले हरे वैजनी शुभ्र रक्तवर्णी वस्त्र एक पर एक उसके बाहर निकलने लगे। वाद्यों में तीव्रता आने से अनेक लोगों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। विक्षिप्त हाथी की तरह दुशासन बौखला उठा था। विकर्ण को आनंद से तालियां पीटते देखकर वह और अधिक झल्ला उठा। उस समय दुशासन का विरोध करने के लिए यदि कोई आगे बढ़ता तो वह किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं था। विरोध करने वाले के वस्त्रों को खींचने लग जाता। दुशासन के अविवेक के अंगारों को फूंक फूंक कर दुर्योधन ने प्रज्वलित कर दिया था। मेरे अवाच्य शब्दों के झंझावात से भड़क कर वह दावानल हो गया था। ऐसा दावानल जिसको न अब दुर्योधन बुझा सकता था, न मय और न कुरुओं का पराजदंड और कोई भी नहीं। सभागृह में अंशकों का ढेर लगने लगा और मेरे मन में असंख्य विचारों का। यह क्या किया मैंने? बचपन से कठोर नियम और कष्ट साध्य प्रयत्नों से हस्तगत की गई चरित्र की धवल साधना एक क्षण में प्रतिशोध के काले कुंड में आज मैंने डुबो दी। कर्ण, योद्धाओं द्वारा प्रशंसित कर्ण, महान आपत्तियों को धैर्यपूर्वक कर्तृत्व में रूपांतरित करने वाला कर्ण, प्रेम के धागों से समस्त नगरजनों के हृदय पर राज्य करने वाला कर्ण, एक ही क्षण में भावनाओं के राज्य का अभागा पराजित कर्ण बन गया। शिशुपाल और मैं, दुशासन और मैं, इतना ही नहीं बल्कि कंस और मैं, इनमें क्या कोई अंतर नहीं है? यह सोचकर पहली बार मेरी आंखों में आंसू आ गए। राजसभा में आए मेरे जीवन के प्रथम आंसू। उसमें करुणा नहीं थी, भीति नहीं था, याचना नहीं थी, परिणाम के भय से थरथर कांपने वाला पश्चाताप भी नहीं था। प्राणपण से जीवन भर हृदय से लगाए हुए आदर्श नीति तत्वों को हृदय पर रखकर अंशकों के ढेर में सूर्य शिष्य कर्ण की काया खोजते हुए गंभीर मन के बांध को तोड़कर आई हुई वेदना और यातना की एक तीव्र लहर थी। अश्रुबिंदु के रूप में वह पीड़ा साकार हो उठी, वह भी सुतपुत्र कर्ण की आंखों में। सूर्य शिष्य के लिए सुतपुत्र की आंखों में आंसू। क्षण भर के लिए एक विचार तैर गया, यदि मैं सुतपुत्र न होता तो कैसा रहा होता मेरा जीवन? श्री कृष्ण जैसा क्यों नहीं, हो भी सकता था। संस्कार के संघातों से साधारण असाधारण हो जाता है। इसके विपरीत कुसंस्कारों के कीचड़ में कमल पुष्प की पंखुड़ियां घृणित काय बन जाती है। कोई कैसा दिखाई दे इसकी अपेक्षा कैसा होना चाहिए इसका महत्व अधिक है। यदि यह संभव न हो सके तो कम से कम कैसा नहीं होना चाहिए का तो निश्चित ही महत्व है। मैंने एक ही क्षण में ये सब मर्यादाएं भंग कर दी थी। मेरी आंखों के आगे वे पहले ही अश्रुकण कुरुओं की राजसभा में निकलकर हाथ के उत्तरीय पर गिरकर विलीन हो गए। उसका पता सभागृह की किसी भी व्यक्ति को नहीं लगा। शांत आंखों के सम्मुख पांचाली खड़ी थी। स्वेद से लथपथ थकित दुशासन क्षण भर रुका। सैकड़ों योजनों की यात्रा करके आए हुए घोड़ों की तरह हांफ रहा था वह। अंशकों का वह ढेर उन दोनों से भी अधिक ऊंचाई दिखाई दे रहा था। सभी वाद्यों की ध्वनि एकाएक रुक गई और केवल मुरली के भयंकर स्वर वातावरण में चीरने लगी। पांचाली के देह पर पीतवर्ण अंशुक झिलमिला रहा था, सुवर्ण धागों से बने हुए वस्त्र जैसा। मुझे ऐसा लगा जैसे पहले भी मैंने उसे कभी देखा हो। सारी शक्ति एकत्रित कर उस पीताम्बर को भी खींचने के लिए दुशासन ने हाथ बढ़ाया। आगे के खुर उठाकर बीच में उछलने वाले शुभ्र घोड़े की तरह दोनों हाथ उठाकर पीताम्बर तड़ाक से गरज उठे। दुशासन, अब तिल भर भी आगे मत पढ़ना, शिशुपाल की तरह एक क्षण में भी भस्म हो जाएगा। याद रख, यह पीताम्बर है। शरीर में शक्ति न रहने के कारण हाथ नीचे कर दुशासन घिसटता हुआ जैसे तैसे अपने आसन के पास पहुंचा। आसन के हत्थे पर हाथ रखकर वह कमर झुकाकर खड़ा रहा। उसके स्वेद से भरे मस्तक से दो बूंद उसी के आसन पर टपक पड़ी। वह खड़ा खड़ा ही उन बूंदों पर धड़ाम से गिर पड़ा जैसे शक्ति बिल्कुल ही न रही हो। आसन पर स्वेद बिंदुओं पर दुशासन। घृणा से मैंने मुख मोड़ लिया। उत्तरी हाथ से कब का गिर चुका था। पीताम्बर के तेजस्वी वर्ण के सामने उस उत्तरी का वर्ण कुछ भी नहीं था। खिन्न मन से मैं नीचे बैठ गया। घूमते घूमते पांचाली को चक्कर आ गए थे। हवा के झोंकों से जैसे कटसरैया की कली इधर उधर डोलती है वैसे ही वह क्षण भर लड़खड़ाई और फिर केले के वृक्ष की तरह मानो वृक्षों वस्त्रों के ढेर पर अचेत होकर गिर पड़ी। विविध रंगों के वस्त्रों के उस इंद्रधनुष में पीताम्बर धारण किए हुए वह विद्युत लता सी लगी। उसके अनावृत चरणों की धूल सिर से लगाने के लिए सभासदों में से कुछ आगे बढ़े, लेकिन इतने में ही चारों शांति देखकर पर्वत शिखर छोड़कर नीचे उतरने वाले गरुण की तरह पितामह को सीढ़ियां पार कर द्रौपदी की ओर आते हुए देखकर सबके सब जहां के तहां ठिटक गए। द्रौपदी के पास पहुंचकर पितामह सबको लक्ष्य कर गंभीर स्वर में बोले, सदस्यों, दूत समाप्त हो गया है पासों का। अब आप लोग जा सकते हैं, लेकिन याद रखिए यह सदा के लिए दूत प्रारंभ हो गया है घटनाओं का। सिर झुकाकर सभी लोग सभागृह छोड़ने लगे। अपने अपने भवनों की ओर लौटने वाले युवराजों में से ठीक विकर्ण के ही पैरों के नीचे मेरे हाथों से छूट कर नीचे गिरा हुआ उत्तरी आ गया। पीताम्बर पांचाली के देह पर था, लेकिन मेरा उत्तरी था विकर्ण के पैरों तले। मेरा मन विषण हो गया। मेरे उत्तरी को रोते हुए कर्ण ने पितामह का भी ख्याल न करते हुए आगे बढ़कर निश्चल पड़े हुए मूर्छित पांचाली की चरण धूली सिर पर धारण की केवल एकमात्र विकर्ण ने। जैसे ही सभी सभासद सभागृह से बाहर हुए, पितामह ने कमर में बांधा हुआ खड्ग म्यान से बाहर निकाला। पाषाण की अचल प्रतिमा की तरह आसन पर बैठा हुआ मैं मेघाच्छादित गगन का संदिग्ध प्रातःकाल लेकर आने वाले दिन का अर्थ जानने का प्रयत्न कर रहा था। आज का पूरा दिन आश्चर्य संभ्रम रहस्य अयथार्थता अधःपतन मूढ़ता क्रूरता तथा अविवेक के अतिरिक्त और क्या था। परंतु पितामह के हाथ में धारदार खड्ग देखकर विस्मय के एक और प्रचंड आघात से मेरा मन क्षण भर के लिए कांप गया। क्या है इनके मन में? क्षण भर पहले आंखें दीप्त करने वाले उस नाटक से मैं इतना स्तब्ध नहीं हुआ था जितना कि ताल वृक्ष जैसे लंबे उस वृद्ध के हाथ में युवा चमकता खड्ग देखकर स्तब्ध हुआ। क्या होगा इनके मन में? अब और क्या देखना पड़ेगा? दायां पैर मोड़कर विरासन की स्थिति में वे वस्त्रों के ढेर के पास नीचे बैठ गए और पीठ पर धीरे से हाथ रख पांचालिका कर उन्होंने द्रौपदी को पुकारा। अंशुकों का ढेर हिला लेकिन वह जैसे ही निश्चिष्ट पड़ी थी। पितामह ने पीताम्बर का छोर उठाया और हाथ में लगे हुए खड्ग से पीताम्बर से जुड़ा हुआ आकाशवंडे अंशुक सर से काट दिया। जिस पीताम्बर के संबंध में उन्होंने दुशासन को गंभीर चेतावनी दी थी कि वह हाथ भी न लगाए उसी पीताम्बर को उन्होंने सहज हाथ में लेकर खड्ग से अलग कर दिया। उन्होंने यह कैसे किया? पितामह ने उठकर संकेत किया। दासियों ने आगे बढ़कर द्रौपदी की मूर्छित देह उठा ली। पांडव सिर झुकाए खड़े थे। पितामह ने एक हाथ भीम की पीठ पर और एक अर्जुन की पीठ पर रखकर क्षण भर थपथपाया। सिर का संकेत पाकर वे पांचों पितामह के साथ चले गए। पितामह के हाथ भीम अर्जुन की पीठ पर ही थे। आसन से उठने की भी मेरी इच्छा नहीं हो रही थी। सामने पड़े हुए वस्त्रों के ढेर का पाषाण पर्वत बनकर कोई भी उसको मेरी छाती पर रख रहा है इस भावना से मेरी श्वास अवरुद्ध हो रही थी। कितने देर तक मैं इसी स्थिति में बैठा रहा इसका मुझको भी पता न चला। संध्या काल की विभत्स धूमिल छाया में जब भव्य सभागृह के रिक्त आसन भयानक दिखाई देने लगे तब मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। नित्य नियमानुसार सभागृह में को समाइयों से प्रकाशित करने का ध्यान सेवकों को नहीं रहा था लेकिन जो अंधकार मुझे घेरे हुए था वह इन टिमटिमाती समाइयों से भला क्या दूर होता। कुछ समय तक तो ऐसा लग रहा था मानो मैं नींद से जगा हूँ। खिन्न मन से उठकर मंद मंद चरण रखता हुआ मैं सभागृह से बाहर जाने लगा। अंशकों के ढेर में पड़े विविध रंग के वस्त्रों को धूमिल संध्या प्रकाश में देखते समय मुझको अपना जीवन भी वस्त्र के उस ढेर सा ही लगा परंतु पीताम्बर जैसा चमकीला तेजस्वी वस्त्र एक भी तो उसमें नहीं था। सभागृह के महाद्वार पर पहुंचते ही अपने निर्माण से लेकर आज तक वैभवपूर्ण तेजस्वी अभिमानास्पद और गौरवास्पद अनेक अवसर देखने वाले उस भवन पर आज की घटनाओं के स्मृतियों के चिन्ह जैसे अंकित हुए हैं यह देखने के लिए मैंने पीछे मुड़कर देखा। पुरुष भर ऊंचा सुवर्ण सिंहासन प्रकाश न होने के कारण चमक नहीं रहा था। सारे रिक्त आसन नदी किनारे अस्त व्यस्त पड़े हुए काले पाषाणों जैसे कलाहीन लग रहे थे। केवल दूर एक आसन पर हत्थे पर सिर रखकर कोई मेरे बाद भी सभागृह में ऐसे ही बैठा हुआ था जैसे शरीर में प्राण ही न हो। आसन के क्रमांक के अनुसार वह दुशासन था यह निश्चित था, नहीं तो कोई और क्यों इतने समय तक वहां पड़ा रहता। वह इतना अचेत बैठा था कि उसमें और अंशकों के निश्चल ढेर में कोई अंतर ही प्रतीत न हुआ। एक निश्वास छोड़कर मैं महाद्वार से निकला। गंगा तट पर जाकर नियमानुसार संध्याकालीन अर्घ्यदान करने की भी मेरी इच्छा नहीं हुई। आकाश की संपूर्ण पश्चिम दिशा काली काली घटाओं से घिर आई थी। मेरे पैर ऐसे उठे थे मानो बड़ी बड़ी जंजीरों से जकड़ दिए गए। महल की ओर जाने वाले सोपान की सीढ़ियां चढ़कर मैं महल के द्वार पर आया। विष्णु मंदिर के सभागृह के सामने मेघमाला तिरछी झुककर चंचुपात्र में इंगुदी का तेल समय में भर रही थी। समय पूरी भरते ही उसने उसकी बात ही प्रज्वलित की। उसका केतकी जैसा मुखमंडल समय के प्रकाश किरणों में दमक उठा। उसको देखते ही मुझको प्रातःकाल उसकी असावधानी के कारण हाथ से गिरे हुए अल्पना पात्र का स्मरण हो आया। जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता हुआ मैं सीधे गर्भगृह के सामने पहुंचा। मुझको देखते ही मेघमाला संभल कर दूर हट गई। गर्भगृह के सम्मुख रखी पत्थर की सवाई उठाकर नीचे फर्श पर उस स्थान को मैंने देखा जहाँ अल्पना बिखरी हुई थी। वहां से धवल वर्णी अल्पना उड़ गई थी, पीतवर्णी हल्दी उड़ गई थी, शेष रह गई थी केवल रक्तवर्णी कुमकुम की गहरी रेखाएं इतस्तत बिखरी हुई। खिन्नता सहस कर मैंने उस बिखरे हुए कुमकुम को अंगुलियों से स्पर्श किया। बड़ा विचित्र सा लगा वह। उठकर समय मेघमाला के हाथों में देकर मैं सीधे शयनागार की ओर चल दिया। न जाने कहां से शोण मेरे सामने आ गया। उसको देखते ही मेरी इच्छा हुई कि उसे भुजाओं में कस लूं और बचपन के वसु की तरह उसे पूछूं, शोण मैं कौन हूं? परंतु प्रातःकाल गंगा किनारे उसका स्नेहपूर्ण हाथ मैंने इतने निष्ठुरता से झड़क दिया था। उससे कुछ भी न कहकर मैं शयनागार की ओर मुड़ा परंतु वह स्वयं ही सामने आकर बोला, भैया ठहरो। आखिर वह मेरा सगा भाई था। अग्रज होकर भी मुझको उसके आदेश के सभी बोल अब सुनने थे। मैं खड़ा हो गया। भैया सबने आज तुमसे प्रातःकाल गंगा में खड़े होकर अग्रदान करने का आग्रह क्यों किया था? यह अभी ज्ञात हुआ या नहीं? शोण, वह ज्ञात हो भी जाए तो उसमें अब कोई लाभ नहीं, परंतु जिनके लिए तुम जीवन के सभी आदर्श दाव पर लगा देते हो वे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? यह तो तुम्हें ज्ञात होना ही चाहिए। क्यों भेजा था सबने आज प्रातःकाल आग्रहपूर्वक मुझको गंगा किनारे? तुम बताओ। आज के दूत के पास हो कौन या भीम मधिर जरासंध के हाणों की थी, जिसको तुमने द्वंद में जीवन दान दिया था। क्या क्या कह रहे हो शोण? जरासंध के हाड़ लाने के लिए दुशासन मगधों के राजगीर गया था? मैंने उसे कंधों से पकड़कर झकझोरा। हाँ, तुम्हारे शब्दाघात के साथ ही कौड़ियाँ थरथराती है, यह अच्छी तरह जानकर सबने तुमको द्वित समाप्त होने तक बड़ी चतुराई से आज सभागृह के बाहर रखा था। कौड़ियाँ तुमसे और भीमसेन से ही थरथराती थी। तुमने यह सब कैसे जाना? सत्यसेन से। दुर्योधन तुमको गंगा तट पर भेज देगा, यह बात सत्यसेन पहले ही जानता था। आज का पूरा दिन ही आश्चर्य का रहस्यमय जाल बुनने वाला दिन था। शोण जाओ तुम, परंतु ध्यान रखना शोण, प्रातःकाल मैंने तुमको झिड़क दिया था, इसलिए मेरे प्रति तुम अन्यथा भाव न रखना। सारा संसार प्रतिकूल हो जाए चिंता नहीं, परंतु तुम मेरे भाई हो, हम दोनों एक ही माता के रक्त मांस के पिंड हैं, यह मत भूलना। भैया, तुम्हारे चरणों पर मृत्यु भी आए तो मैं उसको हृदय में लगा लूँ, जैसे गंगा के तट की सीपियों को अंजलियों भरकर मैं हृदय से लगा लेता था। आगे बढ़कर उसने हाथ से मेरे चरणों का स्पर्श किया। गर्भगृह के पास अवगुंठन में खड़ी हुई मेघमाला की ओर अंगुली उठाकर मैंने उससे कहा, जाओ सोन, उससे कहना कि अल्पना कुछ गई है, कुछ जाने के लिए ही होती है वह। वह धीरे धीरे चला गया। शयनागार के प्रवेश द्वार से तल्प पर बैठे हुए विशाली को देखते ही मुझको जीवन में पहली बार अपने ही ऊपर लज्जा आई। सभागृह की अप्रिय घटनाओं का स्मरण करा के अपने प्रश्नों के आघात से अब वह मुझको आहत करेगी। क्या उत्तर दूंगा मैं उसको? अपने पति के संबंध में उसने आज क्या सोचा होगा? भीतर प्रवेश किया, मानो उसको देखा ही नहीं, वह प्रदर्शित कर मैं गवाक्ष के बाहर अंधकार में दिखाई न पड़ने वाली गंगा की ओर देखने लगा। सदैव की तरह आकर मेरे पीछे खड़ी हुई और वह आश्चर्य से बोली, अरे आपका उत्तर ही कहाँ है आज? किसी को दे दिया क्या? हाँ, देना चाहता था परंतु दे न सका। परंतु एक साधारण उत्तर ही के लिए तुम क्यों आज यह प्रश्न कर रहे हो? साधारण नहीं नहीं, यह अनेक स्मृतियां संजो रखने वाला उत्तर ही था। गंगा तट से पागलों की तरह जिसको मैं उठा लाई थी, वह आपका और मेरा दोनों का एक ही प्रिय उत्तर ही था। कहाँ गया वह? वह गया, सदा के लिए गया। वह वस्त्र से भी अधिक मूल्यवान वस्त्र इस संसार में है, यह विश्वास मुझको दिलाकर आज सदा के लिए ही चला गया। चला गया तो चला जाए, पति स्त्री का सबसे बड़ा वस्त्र है। मेरी पीठ पर कपूर रखकर वह सदा की भांति प्रेम पूर्ण आदर से बोली। तो सभागृह की एक भी घटना यह जान नहीं पाई थी मैंने मुक्ति की सांस ली। आपने अपना उत्तरीय जाने की आश्चर्यजनक बात मुझको बताई है, मैं उससे भी अधिक आश्चर्यजनक वार्ता सुनाकर आज आपको चकित कर दूंगी, कहकर वह कह रही थी। किंतु मेरे सामने तो निरंतर सभागृह घूम रहा था, नीले पीले हरे और लाल रंग के थे। कौन सी? उससे दूर हटकर एक दूसरे गवाक्ष के द्वार पर खड़े होते हुए मैंने पूछा। आप सदैव कहते हैं पांचाली आपका तिरस्कार करती, परंतु विशाली, इस विषय पर कुछ भी सुनने को मुझे आज आवश्यकता नहीं रही। मैंने जो कुछ किया उसकी कोई भी इस प्रकार परीक्षा करे, जैसे तट पर खड़े प्रेक्षक तैरने वाला की करते हैं, मैं यह नहीं चाहता। लेकिन सुनिए तो, पांचाली ने हृदय से आपका तिरस्कार कभी नहीं किया, मुझको बीच में ही रोककर विशाली बोली, यह तुम कैसे कर सकती हो? आज स्वयं मुझको पता चला कि क्या पता चला तुम्हें? आज तीसरे प्रहर जब हम अंतपुर में बैठे हुए थे, उसी समय द्रौपदी स्नान कर अंतपुर में पहुंची। आपकी पत्नी होने के कारण बड़े स्नेह से उसने मेरी पूछताछ की। विशेषण के कान से हाथ लगाकर तो उसने यहाँ तक कहा कि सचमुच ही तुम्हारे इस पुत्र को कुंडल क्यों नहीं है? मैं भी क्या उत्तर देती, यह तो इसके पितृदेव ही जाने, कहकर मैंने किसी तरह बात टाली। परंतु आपका उल्लेख करते ही उसने तत्क्षण अपना सिर झुका लिया। क्यों झुका लिया वृशाली? यह बात तुम कभी नहीं समझ पाओगे। बाहर अंधकार के सागर में नेत्रों के बाण दूर तक फेंकता हुआ मैं बोला, मुझे भी यही संदेह हुआ था, कदाचित मेरे सामने भी वह आपका उपहास करना चाहती थी। इसीलिए जब वह केशभूषा के लिए दर्पण की ओर मुड़ी, तब सत्यासत्य परखने के लिए मैंने उसकी हिरण्यमयी नामक सखी को पास बुलाया। उसने जो कुछ बताया उसको सुनकर ही तो मेरी यह दशा हुई है। मैं सोचने लगी कि किस तरह आपको अतिशीघ्र यह सब बातें बताऊं और आपके मन का संदेह दूर कर दूं। मृणाल को भेजकर मैंने आपको ढूंढवाया ही, परंतु उस समय आप सभागृह में मग्न थे। ऐसी कौन सी आश्चर्यजनक बात उसने तुम्हें बताई? सबके साथ राजसूय यज्ञ के लिए आप एक बार इंद्रप्रस्थ गए थे। उस समय मायावी पदार्थों के कक्ष में सोपान पर से आपके कुंडल मंडित मुख का सरोवर में पड़ा हुआ आंशिक प्रतिबिंब देखकर पांचाली ने धीरे से उसके कान में कहा था कि क्या कहा था उसने? बताओ वृशाली। उस समय तो मैं भी भ्रम में पड़ा हुआ था और आज भी पड़ा हुआ हूँ। उसने फुसफुसाकर कहा था कि हिरण्यमयी इन कवच कुंडलों का पत्नित्व प्राप्त करने का सौभाग्य यदि प्राप्त हो जाता तो मेरे जीवन उद्यान में कितने बसंत खिल जाते। अंगराजकर्ण यदि पति के रूप में प्राप्त हो जाते तो पांच पतियों के सहवास में विषमता से बांटे गए वर्ष दो दो महीनों के शमशाहवास में विभक्त न हो जाते क्या? पीछे से आकर उसने मेरी पीठ पर सिर टेक दिया। पीछे मुड़कर पांचाली कहकर विशाली का मुख दोनों हाथड़ियों से लेता हुआ मैं मान रहित होकर तड़प उठा। पांचाली नहीं विशाली, मेरे हाथों पर अपने हाथ धरती हुई विशाली बोली, कम से कम अब तो पांचाली को गलत समझने के संतप्त रहने वाला आपका मन शांत रहेगा ना। समय के दुधले प्रकाश में मेरी आंखों में भीतर तक झांकते हुए वह कुछ ढूंढने लगी। अनेक प्रकार के मिश्रित भावनाओं से मन अशांत हो गया। प्रातःकाल से ही सत्यासत्य के द्वंद में मात्र दैवयोग से ही मैं सत्य से वंचित होकर असत्य की ओर क्या नहीं फेंका गया था? क्या लाभ था अब सत्य समझकर, पांचाली की भावना को समझकर? विशाली, उसको अंक में भरता हुआ मैं धीरे से बुदबुदाया, कितने महान हैं आप। पांचाली भी मुझसे ईर्ष्या करती होगी, मेरी छाती में मस्तक चिपाती हुई वह बोली, मैं और महान विशाली, मैं महान था परंतु आज नहीं हूँ। मेरे लिए तो आप सदा सर्वदा महान ही रहेंगे। बंधन से स्वयं को मुक्त करती हुई वह झोंके की तरह शयनगृह से बाहर चलती मेरे लिए कुछ न लाने जा रही थी। यह जानकर मैंने उससे कहा, विशाली मेरे लिए कुछ मत लाना, मुझको भूख नहीं है। उसके बाहर जाते ही धीरे से आगे बढ़कर मैंने शयनगृह का द्वार भीतर से बंद कर लिया और पलंग पर लेट गया। मन का शरीर का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया था। ऐसे अत्यंत क्षितिज का पता लगाने के लिए समुद्र पक्षी पानी से निकलकर छटपटाता हुआ आगे बढ़ता जाता है, वैसे मेरा मन भविष्य का पता लगाने के लिए जी जान से दौड़ रहा था, परंतु सीमा का पता न चलने से फिर देह के पिजड़े में आ जाता था और चोंच फाड़ कर हाँफता हुआ निश्चेष्ट हो जाता था। वह करा रहा था, पांचाली क्षमा कर, पांचाली क्षमा कर। सुकोमल शैया को मृदु स्पर्श से मेरे अवसर पर ऐसे अवसर पर मन और अधिक अशांत तथा व्याकुल हो जाता है। इसीलिए हिम शीतल फर्श पर घुटने टेक कर मैंने अपना सिर पलंग की पाटी पर रख दिया, परंतु क्षण भर में ही सारा दिन सूर्य किरणों की तरह चिलचिलाता हुआ मेरी आंखों के आगे खड़ा हो गया। शरीर की आंखें बंद की जा सकती हैं, परंतु मन की आंखें तो कभी बंद नहीं की जा सकती। घटनाओं के चित्र पक्षी विविध वर्णों के पंख फड़फड़ाते हुए आंखों के आगे नाचने लगे, बीच बीच में चित्कार करने लगे। मेघाच्छादित आकाश, अल्पना का पंचपात्र, किकियाती दौड़ती हुई टिटहरी, निस्तेज कुंडल, यज्ञ कुंड पर बैठा हुआ कौआ, काला एकदम किट काला दिन, पांचाली के बिखरे हुए काले केश, अश्रु और रक्त बिंदु, आह रक्त और अश्रुओं की नदियाँ, थरथराने वाली कौड़ियाँ, मंदोन्मत हाथी जैसा दुशासन और अविवेक मार्गचित अधपतित कर्ण, आसपास क्रंदन, आक्रोश, अन्याय, विडम्बना, चमकता हुआ पीताम्बर और पैरों को तले रौदा गया उत्तरी, बिखरी हुई अल्पना की शुभ धवल छटा, बचा हुआ कुमकुम, केवल रक्तवर्णी गहरा कुमकुम, चरणों पर मस्तक रखने वाला सोण, पीठ पर मस्तक रखने वाले विशाली, वर्ष का दो दो महीनों में विभाजन करने की इच्छुक पांचाली, पांचाली, पांचाली। असह्य भाव से मैंने सिर उठाया। चारों ओर समय का टिमटिमाता प्रकाश था। विभुचित व्यक्ति कदन मिलने से भी बौरा उठता है। उसी व्याकुलता से मन का अंधकार दूर करने के लिए मैं समय की ज्योति की ओर देखने लगा। उस ज्योति में भी पांचाली खड़ी थी। अतिशय सौम्य मुद्रा में वह विनम्रता से मुझसे कह रही थी, अंगराज, मैंने आज सभा में आपके आगे हाथ नहीं फैलाया, इसका आपको हार्दिक दुख हुआ होगा। पांचाली ने फिर मुझको ठुकराया है, ये सोचकर आपके मन के टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे, परंतु सच तो यह है कि किस मुंह से मैं आज आपको अभय मांगती, आपसे सहायता मांगती, क्या अधिकार था मुझको? आपके चमकते कुंडलों को किसी समय मैंने अपने सुगंध के मद में क्या ठुकरा नहीं दिया था? मेरी अंगभूत सुगंध की तरह ही आपके अंगभूत कवच कुंडल मूल्यवान है, यह बात मैं बड़ी देर में समझ सकी, और जब मैंने यह जाना तब कोई उपाय नहीं रह गया था। मैंने आपको धिक्कारा था, इसकी असह्य वेदना हृदय में लिए हुए मैं आपके सम्मुख सभागृह में हाथ पसारती और आप मुझको ठुकरा देते, तब तो उस यातना की पीड़ा मैं कैसे सह पाती? इसीलिए, केवल इसीलिए अपनी लज्जा के कारण मैं आपके आगे हाथ नहीं पसार सकी, आपका तिरस्कार करने के लिए नहीं, आपका अपमान करने के विचार से नहीं, परंतु आपने मुझको विलासिनी, वारांगना और उल्टा कहा, पांच पतियों से रमण करने वाली स्वेच्छाचारिणी कहा। बताइए, माता की आज्ञा पालन करने वाला पति जब अपनी पत्नी को अपने भाइयों की भी पत्नी बना देता है, तब उस ज्येष्ठ पति की बात मानने वाली स्त्री उल्टा कैसे हुई? कहिए, क्या मैं वारांगना हूँ, क्या विलासिनी हूँ, क्या उल्टा हूँ? स्वयं अपने मन से पूछकर मुझको उत्तर दीजिए। ज्योति क्षण प्रति क्षण बढ़ती जा रही थी। यह भान होने पर आंखों पर हाथ रखकर मैं चिल्लाया, नहीं पांचाली, तू कुलटा नहीं है, तू पतिव्रता है, विशाली जितनी ही तू भी पवित्र है। बाहर घना अंधकार था, फिर भी मैं उठ खड़ा हुआ। शयनगृह महल पीछे छोड़कर सोपान उतरता हुआ राजभवन की प्राचीर के महाद्वार पर आया। ऊँगते हुए द्वारपालों को बिना उठाए महाद्वार की अर्गल अर्गला अलग कर द्वार खोला, फिर बढ़ने लगा गंगा की ओर। सारे हस्तिनापुर के जैसे अंधकार ने निगल लिया हो। मार्ग अपरिचित नहीं लग रहे थे क्योंकि वो पहले से परिचित थे, जिसके कारण मैं पथभ्रष्ट नहीं हो रहा था। यही यथेष्ट था। गंगा के किनारे अपने चिरपरिचित पाषाण पर जाकर बैठ गया। उस शांत जलवाहिनी के किनारे घने खड़े वृक्षों में से किसी कदम वृक्ष पर यदा कदा कोई कारण्डव पक्षी पंख फड़फड़ाता व मर्मभेदी चित्कार कर उठता था, परंतु दूसरे ही क्षण उसकी आवाज़ किनारे पर नीरव निस्तब्ध शांत वातावरण में जाने कहाँ खो जाती थी। आकाश का नीला पारिजात वृक्ष छोटे छोटे तारक पुष्पों से खचाखच भरा हुआ था। उन्हीं में से एक पुष्प प्रतिबिंब के रूप में गंगा के किनारे बिखरे पड़े थे। बहुत देर तक उस पाषाण पर बैठा रहा, परंतु अंतरतम का संभ्रम और कोलाहल कब रुकेगा इसका कोई उत्तर मुझको प्राप्त नहीं हुआ। लपलपाती हुई लहरें उत्तर कभी देवी शक्ति थी। अंत में खिन्न मन से गंगा तट छोड़कर महल की ओर लौटा। तड़पता हुआ न जाने कब निद्राधीन हो गया। निद्रा सबसे अधिक उदार हृदय माता है। विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न दुख पर वह समान ममता से कुछ समय के लिए ही सही, पर निश्चित रूप से अपने विशाल उदर में समा लेती है।